धन्यवाद भाई नेविल, ये एक प्रकार से मेरे लिए आश्चर्यजनक है। आज मुझे यहाँ नहीं होना था, परंतु आज रात्रि प्रभु भोज की रात्रि है और मैंने सोचा कि मैं आज प्रातः यहीं रुक जाऊं। और मैंने भाई नेविल से फोन पर बात की और उन्होंने कहा, अच्छा तो अब यदि आप आ रहे हैं, बोले क्यों नहीं आप हमारे लिए थोड़ा सा बोलें। और मैंने सोचा ठीक है, यदि मैं आया हूं और ये संभव था, मैं प्रचार नहीं कर रहा था परंतु कलीसिया से कुछ मामलों पर थोड़ी देर के लिए बातचीत करता। आप जानते हैं कि जो कि मैं सोचता हूं कलीसिया को मजबूत करता है। हम अभी अभी अपने बर्फीले मौसम के शिकार पर से लौटे हैं, वो भाई लोग और मैं यहाँ, और हमें महिमामय समय मिला था। हम बहुत ही आभारी हैं। हम सब भर गए और अपने अपने शिकार मिले जिनका हम शिकार करना चाहते थे। और हमारे सेवक पास्टर, मैं जानता हूँ कि वे विंसेंस के बहुत ही अच्छे हैं, और इसलिए हमें कुछ अच्छे हिरन मिले, और मुझे एक भालू और दो हिरन मिले, और हम वापस आ गए। और मैं समझता हूँ कि ये समय है कि मुझे उन अंतिम सात मोहरों पर बोलना है। और उन्होंने आराधनालय को तैयार नहीं किया और वहाँ कोई चीज विघन डाल रही है। इस कारण ये है कि मैं सोचता हूँ कि नगर हमें हल्के रूप में ले रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए कार खड़ी करने का पर्याप्त स्थान नहीं है, जो कि ये कलीसिया हम करेंगे। हम यहाँ पर नया आराधनालय बनाना चाहते हैं और हमारे पास पहले ही पैसों का अच्छा भाग तय किया रखा है और एक बड़ा आराधनालय बनाने हेतु। परंतु जब हमारी ये सभाएं हो रही हैं, क्यों आप ये समझते हैं कि ये क्या है? और ये एक ऐसी दयनीय बात है, लोग दीवारों के सहारे हैं बाहर वर्षा में, और ये भयानक है। और यहाँ तक कि मेरे मित्रों की ओर से आलोचना होती है, कहा भाई ब्रैनम ऐसा दिखता है कि वे, मेरे एक डॉक्टर मित्र ने कहा ऐसा लगता है कि आप कोई स्थान ले सकते हैं कि आप, मुझे अफसोस होता है, बोले पास से निकलते हुए। मेरे से अगले घर में एक नर्स ने कहा, क्यों एक प्रातः मैं वहाँ 5 बजे आई, आपको वहाँ होना चाहिए था। और कहा लोग पहले ही वहाँ आराधनालय के आसपास प्रातः 5 बजे हैं, आपको वहाँ 9:30 बजे होना था, इसलिए समझे। और ये इससे कठिन सा हो जाता है। और हम आराधनालय में गए, उसमें कुछ स्थान था जहाँ हर कोई बैठ सकता था, और हम सोचते हैं हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। ये विश्वास करता हूँ कि हमें कलीसिया को इन बातों की शिक्षा कहाँ देनी चाहिए जो कि रूप लेती जा रही है, और वो बातें जिनकी भविष्यवाणी लगभग हजारों वर्ष पहले की गई, और पिछले 25-30 वर्षों से ठीक इसी आराधनालय से वे जो भविष्यवाणी घटित होने वाली है, और अब ये हमारे सम्मुख घटित हो रही है। इसलिए हमें इन बातों को दोहरा लेना चाहिए, परंतु हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रातः मैंने अपने टेलीफोन और दूसरी चीजें कल ही कर दी, और मेरे पास थोड़े से और हैं जो आज दोपहर में और आदि आदि। और अब मेरे पास कुछ लोग थे जो अंदर आना चाहते थे, एक बहुत ही अच्छा युवा व्यक्ति जो थोड़ा बलहीन, एक सेवक भाई बाहर क्षेत्र में, और ओ बहुत से ऐसे हैं, और एक भाई नॉर्वे से है। और वहाँ पिछले कमरे में हमारे थोड़े से साक्षात्कार थे, और मैंने कहा ठीक है अब थोड़ा बाहर जाएंगे। और भाई नेविल ने कहा अच्छा हम बाहर आकर और कुछ शब्द कहेंगे, कलीसिया को थोड़ा बल प्राप्त हो। पहले सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैंने यहाँ कागज पर कुछ लिखा हुआ है, और जब मैं आराधनालय में आता हूँ मैंने कुछ कहना था। एक बात जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी वो हमारे अनुग्रहकारी भाई टेलर के मृत्यु के संबंध में, जब हम चले गए थे। भाई टेलर इस आराधनालय में वर्षों वर्षों से आ रहे थे, मैं निश्चित हूँ कि हम सब उन्हें जानते हैं। परंतु यदि यहाँ कोई अपरिचित होता था तो वो मूल्यवान सज्जन बूढ़ा व्यक्ति था जो आपके लिए कोई बैठने का स्थान ढूंढेगा, और वो भाई टेलर थे। अंतिम बार मैंने उन्हें देखा, वो नवयुवक, जब तक मैंने उसे देखा वो वहाँ दरवाजे पर खड़ा था, लगभग 3 या 4 रविवार पहले। उसने कहा भाई ब्रैनम मैं कुछ पुस्तकें लेना चाहता हूँ, मैं इन किताबों को बांटना चाहता हूँ। इसलिए हम, वो जो मैं समझता हूँ उन्हें प्रमेह रोग था और वो अवचेतन अवस्था में चले गए थे, और मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें प्रमेह है था, वो मर गए। वो कभी नहीं मरे, वो केवल प्रभु यीशु के पास रहने को चले गए, और वो ईमानदार बढ़िया भाई था, हमेशा दूसरे लोगों के विषय में सोचता था, और उसकी प्रसन्नता यही थी कि किसी को बैठाने के लिए स्थान ढूंढे जब वे आराधनालय में आते हैं। और आप जानते हैं, हो सकता है जब हम वहाँ पार जाएं, क्या ये बढ़िया नहीं होगा कि भाई टेलर को वहाँ देखें, उस पार हमारे बैठने के लिए स्थान ढूंढें। भाई टेलर के स्मरण उत्सव पर मैं सोचता हूँ मैं यहाँ पर बोलने के लिए नहीं था उनके अंतिम संस्कार पर भाई नेविल के साथ, परंतु मैं अपने सराहना के शब्द उनकी विधवा से कहना चाहता हूँ। बहन टेलर, मैं समझता हूँ कि आप आज प्रातः यहीं कहीं होंगी। उनके निष्ठावान हृदय को आशीष मिले। भाई टेलर ने एक दिन कहा, आकर मुझसे मिले। मैंने वहाँ एक छोटी सी झील खोदी है और उसमें थोड़ी सी मछलियाँ डाली हैं ताकि आप आकर उन्हें पकड़ सकें। हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे और कोई एक था जो उनके लिए सोचता था, वो मसीह था कि उन्हें उद्धार दे। और मैं स्मरणोत्सव में सोचता हूँ अब भी इसी कलीसिया के लिए, जैसे कि ये एक के समान यहाँ इकट्ठा है। आइए हम एक साथ खड़े होकर परमेश्वर के सम्मुख अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, आज प्रातः हम एक मनुष्य के समान इस आराधना स्थल में आने वाले, तेरा महान हाथ हमारे मध्य में आया और हम में से हमारे एक मूल्यवान भाई को ले गया जिससे हम प्रेम करते और जानते हैं कि तूने उससे प्रेम किया। और प्रभु, इस सब के पीछे कारण है या फिर ये इस प्रकार से नहीं होता, ये जानते हुए कि बाइबल हमें बताती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, और ये उसने किया। और हम संसार में चारों ओर देखते हैं और हम पाते हैं प्रकृति हर प्रकार से हमसे कह रही है कि कब्र उसे रोके नहीं रख सकती, क्योंकि पृथ्वी पर उसने उस उद्देश्य को पूरा किया जिसके लिए आपने उसे यहाँ करने के लिए भेजा था। वो एक अच्छा निष्ठावान भाई था। और हम वनस्पति जीवन में पाते हैं और सूर्य के जीवन में पाते हैं जो कि प्रातः उदय होता है कि हमें उजियाला दे, और दिन के मध्य में ये अधेड़ अवस्था में होता है और तब सांझ को वो फिर मृत हो जाता है, केवल फिर से अगली प्रातः जी उठने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। हम देखते हैं जैसे कि फूल खिलते हैं और पृथ्वी को सुंदर बनाते, अंतिम संस्कार के भवनों को और विवाह स्थानों को सजाते हैं और उद्देश्य को पूरा करते हैं, अपने हृदयों को खोलकर और मधुमक्खी को शहद मुफ्त में देते हैं और पास से निकलने वालों को सुगंध और खोजने वालों को सुंदरता। परमेश्वर की सेवा में जो उसके पास है सब देते हैं, तब ये अपना छोटा सिर झुका देता है, परंतु जब वसंत आसपास आता है तो ये फिर उठता है क्योंकि इसने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया है। और तब प्रकृति और बाइबल के सामने प्रतिज्ञा और पवित्र आत्मा, हम आनंद से अपने हृदयों में आनंदित होते हैं ये जानते हुए कि हमारे भाई टेलर ने इसी प्रकार परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया, और ये कहने के लिए कि वो फिर से न जी उठेगा, ये अपनी बाइबल, हमारे परमेश्वर और वे सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दी हैं, ये जानने के लिए कि एक पुनरुत्थान है को नकारना है। इसलिए सामने की ओर हम उस समय की राह देख रहे हैं जब हम उसे फिर से देखेंगे, जब वो युवा और स्वस्थ और फिर कभी बीमार या बूढ़ा ना हो। उसकी मूल्यवान पत्नी को आशीष दें, उसकी निष्ठावान साथी को। प्रभु, हम कैसे लंबे समय तक उसे नहीं पाएंगे, जैसे कि हम उन्हें एक साथ तालाब पर जाते देखते और उस छोटी टिपाई पर वहाँ बैठे मछली पकड़ते और बातें करते, और वे आपस में वास्तव में कितने मृद हृदय के थे। और अब हम जानते हैं कि एक महान दिन आ रहा है जब विश्वासी नायक उस स्वर्गदूत की महान तुरई के नीचे कदम मिलाकर चलेंगे और उस स्तुति गान के साथ जो समस्त मंडल को भर देगा। हम उन्हें उस स्थान में फिर से देखेंगे। तब तक प्रभु हमें हियाव दे, हमें आशीषित करे, हमारी सहायता करे। और हम प्रत्येक जो इस कलीसिया में आता है, लंबे समय तक भाई टेलर को नहीं पाएंगे। वो कैसे दरवाजे पर खड़े रहा करते थे और आने वालों के लिए स्थान ढूंढते थे कि परमेश्वर का वचन सुने और आराम से बैठें और विश्राम पाएं। और उस दिन जब वो यहाँ से चले गए, प्रभु, मैंने प्रार्थना की कि वो महान परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ उस द्वार पर खड़ा हो कि उसके लिए भी स्वर्ग में स्थान देखे ताकि वो बैठ सके, क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है, दया करने वालों के लिए दया की जाएगी। जब तक हम उसे ना देखें, प्रभु, होने दे कि उनकी मीठी याद हमारे हृदयों में बनी रहे, जब तक किसी दिन जब हम उससे उस दूसरे देश में ना मिलें। यीशु मसीह के नाम में होकर हम इसे मांगते हैं, आमीन। वो बहुत समय हमारे मध्य में और अपरिचितों के बीच में और आदि आदि जो हमारी कलीसिया या हमारे भवन में यहाँ आराधना करने आते हैं नहीं होंगे। उनका प्राण शांति में परमेश्वर के सन्मुख उस दिन तक विश्राम करे। किसी भी दिन हम में से प्रत्येक एक एक करके जाएगा जब तक हम एक पंक्ति में इस प्रकार हो जाएं। आइए जब हमारे पास समय है कि अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कब होगा। हम नहीं जानते कि अगला कौन होगा। हम इस प्रकार से जीवित रहें कि प्रत्येक दिन यदि ये कभी आता है तो ये हमारे लिए है, हम तैयार रहेंगे। अब मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। अब जल्द शायद हो सकता है, मैंने जब से मैं आया हूँ ट्रस्टियों से बात नहीं की है यहाँ इस भवन आराधनालय की स्थिति के विषय में, या हमें अगला क्या करना चाहिए अपने आराधनालय को पाने के लिए ताकि हम अपनी सभाएं कर सकें। तब मैं निरंतर उन सात मोहरों को लूंगा और तब वहाँ सात कटोरे और बहुत सारी चीजें अभी हैं जिनको हमें सीधे सीधे लेना है। और अब अगली रविवार की प्रातः मुझे एलिजाबेथ टाउन केंटकी में भाई एलजी हूवर के साथ समर्पण सभा में होना है और वहाँ नए आराधनालय को समर्पित करना है, या आराधनालय जो उन्होंने एलिजाबेथ नगर केंटकी में खरीदा है वहीं 62 पर। जब तक आप एलिजाबेथ नगर पहुँचते हैं, या मेरा अर्थ 31 पर, या वहाँ शुल्क द्वार पर, जैसे ही आप मोड़ से मुड़ते हैं आप एलिजाबेथ नगर को जाते हैं और ये लगभग एक घंटा, ये लगभग 35 या 40 मील नीचे की ओर वहाँ है। मैं सोचता हूँ लगभग 31 मार्ग से होते हुए 40 मील है, या लगभग 35 मील या कुछ ऐसे ही शुल्क द्वार से नीचे हुए। ये मलबेरी गली पर है। वो समर्पण सभा भाई हूवर का नियमित संडे स्कूल 10 बजे होगा और मुझे समर्पण सभा में 11 बजे प्रचार करना है 12 तक नवंबर के इस आने वाले रविवार को 11वें। सूचना पट पर वहाँ इसका समाचार लगा है, आप अपना मार्ग वहाँ से देख सकते हैं। ये मलबेरी गली या उन्होंने दिशा निर्देश आराधनालय के सूचना पट पर सामने की ओर दिए हैं। तब नवंबर के 22वें को मुझे शेरपोर्ट लुधियाना में होना है। 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 5 दिन मैं सोचता हूँ शेरपोर्ट लुधियाना में लाइफ टबरनाकल, ये भाई मूर के साथ। वे अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। शेरपोर्ट लुधियाना में 50 वर्ष पहले पेंटिकॉस्टल आशीष उतरी थी, इसी माह के 22वें दिन। 50 वर्ष पहला पेंटिकॉस्टल संदेश वहां प्रचारा गया था और पवित्र आत्मा लुधियाना में उतरा और वे उसका एक स्मरण दिवस और ये स्वर्ण जयंती है। और मुझे इस जुबली पर बोलना है 5 रात्रियां भाई मोर के साथ शेरपोर्ट लाइफ टबरनाकल में। आपके पास यहाँ आसपास कोई मित्र है, क्यों नहीं आप उसे कुछ लिखते या कुछ करते हैं, हमें उन्हें वहाँ पाकर प्रसन्नता होगी। और केवल उन्हें आने वाली सभाओं के विषय में बताएं। लाइफ टबरनाकल, यदि कभी कोई वहाँ भाई मोर के साथ रहा हो, वो बहुत ही शानदार व्यक्ति है और वहाँ बहुत ही शानदार लोग हैं। वे पुराने दक्षिणी, आप उनकी तुलना सरलता से नहीं कर सकते और इसलिए लाइफ टबरनाकल कोई भी जो शेरपोर्ट के आसपास होगा आपको बता सकता है कि ये कहाँ है। शेरपोर्ट में लगभग 2,00,000 लोगों की जनसंख्या है और ये बहुत अच्छा नगर है और बहुत ही स्थान है इसलिए, और आराधनालय बहुत बड़ा आराधनालय है, बहुत बड़ा आराधनालय। उसमें सीढ़ी और बालकनियां और मुख्य स्थान और फिर उसके आगे एक और स्थान और वहाँ बहुत स्थान है। और सीधे उस पार नगर के सभागृह से जिसमें 5,000 कुर्सियां हैं, जैसे कि यहाँ सड़क पार नगर का सभागृह है। और आदरणीय JKT मोर यानी के लाइफ टबरनाकल शेरपोर्ट लुधियाना में जो कि 22वीं से आरंभ होगी, वो बृहस्पतिवार से रविवार तक होगी। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 दिन के बजाय 4 दिन, मुझे खेद। ये 22, 23, 24 और 25वीं, मैं सोचता हूँ ये इसी प्रकार से है नवंबर के। और तब हम मालूम करेंगे तब किस विषय में कि हमने यहाँ आराधनालय के विषय में क्या किया, ये मालूम करेंगे कि उस कलीसिया ने अपना भवन पाने के लिए कैसे उन्नति करी। ठेकेदारों ने हमें बताया कि वे अधिक लोगों को लगा देंगे लगभग 10 दिन तक के लिए ताकि हम उसमें जा सकें, समझे, बहुत ही जल्द। और वे केवल नगर के उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हस्ताक्षर करे। और आप जानते हैं कि हमें कार्य खड़ी करने के लिए अधिक स्थान लेना ही है और ये इतना, ओ प्रभु, ये तो इसमें जाने के लिए बहुत सारा लाल डोरा है भवन या कुछ भी आरंभ करने के लिए। परंतु मैं चाहता हूँ कि कलीसिया को मिले इससे पहले मैं वापस कार्य क्षेत्र में जाऊँ। अब मुझे टांजनी का युगांडा और वहाँ से बुलाहट मिली है। जोसेफ के पास सभाओं की योजना है जो फरवरी में आरम्भ होनी है। और बीते कल में जब मैं अंदर आया तो वहाँ कुछ भाई लोग और बहन टॉम और वे विदेश से आए थे और अपने दरवाजे पर मैंने एक टिप्पणी रखी हुई पाई या एक निमंत्रण दक्षिणी अफ्रीका से एक संस्था। इसलिए मैं उनको लिख रहा हूँ कि मालूम करूँ कि क्या किया जा सकता है। हो सकता है जबकि मैं इतनी दूर हूँ तो मैं दक्षिणी अफ्रीका उतर सकता हूँ, हो सकता है फरवरी और मार्च के अंतिम भाग में और उस समय के चलते। और हम आशा करते हैं कि उस कलीसिया में पहुँचे ताकि मैं इन कलीसियाई कालों को ले सकूं इससे पहले कि शरद ऋतु आरंभ हो, यदि संभव हुआ। यदि ये नहीं हुआ या जब मेरा वहाँ से वापस आना होगा यदि प्रभु यीशु देर करता है। बीते कल मैं सुन रहा था, मैं विश्वास करता हूँ कि ये परसों जब मैं टेपर से ले रहा था मैंने सोचा मैंने इसे यहाँ इस प्रातः बजते सुना है। कोई साधारण दक्षिणी भाई, उसकी माँ इस सभा में आई थी, उसके स्तन में कैंसर के लक्षण थे और उस पर मृत्यु की छाया थी और पवित्र आत्मा ने अभी हाल ही की सभाओं में सदन पाइन में, मैं विश्वास करता हूँ कि ये या कहीं और था, उसे बताया, उसके कैंसर के विषय में बताया और वो कौन थी और वो कहाँ से आई थी और कहा उसके एक पुत्र है जो आत्मिकता में पिछड़ा हुआ था और उसकी एक दुर्घटना होने वाली थी और मानव हत्या के लिए और इस प्रकार सारी की सारी बातें। और ये व्यक्ति ये इसी प्रकार घटित हुआ और उसका कैंसर का लक्षण, बल्कि कैंसर का बढ़ना उसे छोड़ गया जो कि लक्षण की बढ़त कैंसर था, आप जानते हैं। इस प्रकार तब वो उसे छोड़ गया और वो लड़का वहाँ मानव हत्या के लिए था और हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने ये कहा था। और वो फिर से मसीह के पास लाया गया और उसने उसका टेप बनाया और उसे चलाकर मैंने सुना। क्या उस साधारण पुराने सदन की बातों का आनंद लिया? कहा यहाँ उत्तरी कैरोलिना में, उसने कहा, ओ मैं बस इससे बहुत प्रेम करता हूँ, वे पुराने सदन के लोग। और उसके पास प्रभु ने उसे इस पर आशीषित किया। कहा मैं आपको जानता हूँ कि आप कहते हैं कि आप शिक्षा का प्रचार नहीं करते हैं भाई, भाई वर्णम केवल अपनी सभा को, कहा कि हम भी आपकी सभा के भाग हैं। इसलिए उनका ये कहना बहुत सुंदर था। और अब वहाँ एक चित्र है, मैं सोचता हूँ हो सकता है इस प्रातः वो सूचना पट पर है, यदि ये वहाँ नहीं है तो बिली से वहाँ लगा देगा। बहुत सी बार ये कहा गया, जब मैंने ये पहली बार कहना आरंभ किया तो उन्होंने कहा आप बस कल्पना करें भाई वर्णम कि उस ज्योति को देखते हैं, वो ज्योति वहाँ संभवतः मुश्किल से यहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं, वे पुराने लोग जिन्हें पहले का स्मरण है, इससे पहले भी कभी चित्र लिया गया था। क्या यहाँ कोई है जिसने मुझे ये कहते सुना हो बहुत समय पहले? देखिए लगभग चार या पांच हाथ, बहन स्पेंसर यहाँ है और भाई और बहन स्लॉटर और भाई यहाँ है और भाई वहाँ है, यहाँ केवल लगभग पांच या छह पुराने लोग बचे हैं। ठीक है, कुछ समय के पश्चात कैमरे की यांत्रिकी आंख ने उस चित्र को उतारा, इसलिए वो वॉशिंगटन डीसी भेजा गया और परीक्षणकर्ताओं के पास से होता हुआ निकला और वापस आया और कोई दोहरा उद्भासन या कुछ नहीं। कहा प्रकाश लेंस से टकराया, ये जॉर्ज जे लेसी हैं, आपके पास उनके नाम का हस्ताक्षर है, समझे। ठीक है, तब आपने बहुत सी बार सुना है उधर देखो और कहा कि इस व्यक्ति पर काली छाया है, ये मृत्यु की छाया है। कितनों ने मुझे ये कहते सुना है कि बहुत सी बार, समझे, बहुत बार। ये हुआ कि कैमरे ने इसे उतारा, इसलिए यहाँ ये हमारे पास है। एक महिला जो एक बहन के पास आई और उसे कैरोलिना की सभा में बताया, जहाँ की सदन पाइन में हमारी बहुत ही शानदार सभा हुई, और वहाँ वो महिला दोनों स्तनों पर के कैंसर के साथ मर रही थी और डॉक्टर ने उसे मरने हेतु छोड़ दिया था। और उस महिला ने ऐसे ही पहुंचकर उसका चित्र लिया जब मैं उसे बता रहा था कि वो कौन थी और वो कहां से आई थी। और मैंने कहा कि आपके ऊपर काली छाया है, आप मृत्यु की छाया में हैं। और उस महिला ने इसका चित्र लिया और वो वहां पर ये था, कैमरे की यांत्रिकी आंख ने मृत्यु की छाया को पकड़ा। क्या आप में से सबने 10 कमांडमेंट देखी और मृत्यु के दूत को देखा कैसे वो अंदर आता है? वो काली धुंधल की सी छाया ये इस चित्र में है। और मैं सोचता हूँ अब ये सूचना पट पर है, यदि ये नहीं है तो बिली आवाज सुन सकता है, क्यों वो उसे सूचना पट पर लगा दे। और उस व्यक्ति की ओर एक तीर का निशान दर्शाया गया है और वो व्यक्ति और छाया स्त्री को छोड़कर चली गई, आश्चर्यजनक ढंग से चंगी हो गई थी। परंतु वहाँ काले धुएं का सा टोप उस स्त्री के ऊपर घिरा हुआ है और उस कैंसर पर इस प्रकार लटका हुआ था, उसमें से आ रहा था, निश्चय ही जहाँ से मृत्यु उसके भीतर उंडल रही थी कैंसर से होते हुए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप लोगों को कितना भी सत्य बताने का प्रयास करें, वहाँ कोई ना कोई होगा जो संदेह करेगा कि ये सत्य नहीं है। और यदि आप सदा सत्य बताते हैं तब आप समझिए कि आप ठीक हैं। मेरा एक मित्र है जो कि पश्चिम में पशु फार्म पर था और वन विभाग ने लगभग $4,000 बर्फ पर चलने वाली गाड़ी के लिए दिए कि बर्फानी 12 सिंहों के झुंड को गिने जो कि उस कष्टदायक घाटी में रह गए थे। श्री जेफरी जो यहाँ कलीसिया में बैठे हैं, मैंने मसीह तक उनकी अगुवाई की, एक पूरा नास्तिक। आपने मुझे हम दोनों की कहानी सुनाते हुए सुना होगा कि एक साथ घोड़ों पर जा रहे थे और उसने इसमें विश्वास नहीं किया, किसी में नहीं, केवल डार्विन की नीति शास्त्र में। और वो बालक जो कुंवारी से उत्पन्न हुआ निरर्थक बात थी। और उस रात्रि हमने अपना डेरा लगाया जहां उसने मसीह को स्वीकार किया। और इसलिए तब इस मनुष्य ने उसे बताया, उसने कहा अब मैं तुम्हें अब वो वाहन नहीं खरीदना होगा, वो बर्फ का वाहन। कहा मैं तुम्हें बता दूंगा कि वहां पर कितने बर्फानी 12 सिंगे हैं। कहा वहां 19 हैं। कहा वहां 20 थे, वहाँ 21, और मैंने उनमें से मार दिए। और वो शिकारी रक्षक से बातें कर रहा था, तुम्हें केवल एक ही मारना चाहिए था। इसलिए उसने कहा कि वहाँ 21 थे और उनमें से मैंने 2 मार दिए, 19 छोड़ दिए। और उसने कहा हाँ जैक, मैं जानता हूँ कि तुमने उसमें से 2 मार दिए। उसने कहा मैंने मार दिए। उन्होंने बर्फ में चलने वाली गाड़ी ली और वहाँ पहुँचे और वहाँ पर बर्फानी 12 सिंगों के 19 सर थे। उसने कहा बिली एक मनुष्य को सत्य बताओ और वो इसका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ये ऐसा ही होता है। आप लोगों को सत्य बता सकते हैं और तो भी वे इतनी ढेर सारी भ्रांतियाँ होती हैं और चीजों के विषय में झूठ, यहाँ तक कि वे विश्वास नहीं करते कि आप सत्य बता रहे हैं जबकि आप उन्हें सत्य बता रहे हैं, देखा आपने। परंतु हम बहुत ही धन्यवादित हैं कि हमारे पास स्वर्गीय पिता है जो पुष्टिकरण से उस सत्य की पुष्टि करता है कि ये सत्य है। इसलिए यदि मेरे लिए आज का दिन पृथ्वी पर अंतिम दिन है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोज ने प्रमाण को प्रमाणित कर दिया है कि मैंने इन बातों के विषय में सत्य बताया है, ये सही बात है, ये सत्य है। इसलिए संभवतः ये सूचना पट पर होगा। बिली क्या तुम यहाँ इस स्थान में हो? वो चित्र तुम्हारे हाथ में है, यदि है तो उसे यहाँ ले आओ और फिर तुम इसे वहाँ लगा देना और समता वैसे देख सकते हैं। भाई मैं नहीं जानता कि वहाँ उस पट पर बत्ती लगी हुई होगी। और यहाँ ये चित्र ये है, मुझे लगता है आप इसे नहीं देख सकते, परंतु ठीक यहाँ पर आप उस मृत्यु की छाया को देख सकते हैं इस स्त्री के सर के ऊपर। और इसके पीछे की ओर इसके विषय में लिखा हुआ होगा कि उस महिला ने कहाँ चित्र उतारा, और देखने हेतु यदि ये वास्तव में दर्शाया गया है तो वो यहाँ पर है, ये मृत्यु की छाया का टोप है, देखिए ये वहाँ उस पर है। मैं समझता हूँ कि आपने इसे देख लिया होगा भाई नेविल, इसलिए बिली समुदाय से सूचना पट पर लगा देगा यदि तुम चाहो। बिली यहाँ आकर इसे ले जाओ और इसे सामने का चक्कर लगाते हुए ले जाओ और पट पर लगा दो, इसलिए जब वे बाहर जाएं तो प्रत्येक इसे देख सके, वो या डॉक्टर कोई भी। अब मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये आपको स्पष्ट दिखा सके, परंतु इस प्रकार के चित्र के लिए अंधियारा अधिक है, परंतु वो इसे बाहर ले जाएगा तब आप इसे देख सकेंगे जब वो बाहर जाता है। अब सारी घोषणाओं को स्मरण रखें। और अब इस प्रातः मैंने सोचा हम थोड़ा सा किसी विषय पर बोलेंगे ताकि कलीसिया को प्रोत्साहित करें, कुछ जो कि आपको अधिक दे सके। जी हाँ डॉग, यदि आप कर देंगे ये अच्छा हो सकता है। मैं इसको यहाँ प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं उनमें से किसी के पास भी पिछले सप्ताह लगाने के लिए नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि आज के लिए ये थोड़ा सा अच्छा देगा। मैं इस पर बात करना चाहता था क्योंकि ये एक स्वप्न से संबंधित है, एक स्वप्न जो कि एक बहन ने देखा था। मुझे अचरज है यदि बहन शेपर्ड आज प्रातः आराधनालय में है तो मैं उनसे उस रात्रि में मिला था और उस महिला को वास्तव में मैंने पहली बार देखा था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कौन थी। क्या वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। जी हाँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी मैंने जो स्वप्न का उल्लेख किया, क्या कोई बात बाहर से थी उस स्वप्न में बेन शेपर्ड? आप बुरा तो नहीं मानेंगी क्या आप? ठीक है, ये ठीक बात। और इससे पहले कि हम उसे लें, हम फिर से अपने अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरी सारी भलाइयों के लिए तेरी महिमा करते हैं। प्रभु आपने हमें शांत कर दिया है ताकि हम जीवते परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें, जैसा कि ये हमारे पास दर्शन से आया है और पवित्र आत्मा द्वारा पुष्टि हुई, बाइबल के द्वारा समर्थन किया गया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ देंगे ताकि हम जान सकें कि हमें इन अंतिम दिनों में क्या करना है। जैसे कि हम दुष्ट की सामर्थ को अपने चारों ओर देखते हैं, वो युद्ध, वो अंतिम युद्ध, वो लड़ा जाने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करें। एक वास्तविक योद्धा मजबूत, हम अपनी विश्वास की ढाल परमेश्वर के वचन के साथ तलवार लेकर यीशु के नाम में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।
थिंकिंग ऑफ मूविंग फॉरवर्ड,
अब युद्ध में आगे बढ़ने का विचार रखते हुए, जैसे कि एक पंक्तिबद्ध युद्ध अपने कार्य पर तैयार हो, एक वास्तविक युद्ध विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए। बहन और भाई शेपर्ड यहाँ हैं, जो कि हमारे अनुग्रहकारी मित्र हैं, जो इस आराधनालय में आती हैं, और वे परमेश्वर के मूल्यवान बालक हैं। और ये बहन शेपर्ड, जब मैं अपनी डाक उठा रहा था, वो जिसका उत्तर बिली दे सकता था, और जब कोई कहता है कि मुझे इतने सारे प्रार्थना वाले कपड़े भेज दो और मैं उन पर प्रार्थना करता हूँ, और वो उनका उत्तर उन्हें वापस देते हैं। परंतु जब ये व्यक्तिगत पत्र होता है जिसका मुझे स्वयं उत्तर देना होता है, देखा आपने, इसलिए मैंने अपनी व्यक्तिगत डाक उठाई, और इसलिए मैं उसे घर ले जा रहा था और मैं उन्हें पढ़ रहा था। ये बहन शेपर्ड की ओर से था, और ये एक स्वप्न था जो उन्होंने कुछ महीनों पहले देखा था, और वो अभी दो या तीन रविवार पहले तक शांत नहीं होने पाई थी जब मैंने इन सात कलीसियाई कालों पर शिक्षा नहीं दी थी। और सात फलों पर दूसरा पत्रस, ये कैसे इस पर आ जाता है? दूसरा पत्रस एक, कि अपने विश्वास में मिलाते जाओ, समझे? पहला प्रारंभिक विश्वास है, दूसरा अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति से भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, और तब प्रेम चोटी का पत्थर होते हुए वे सात बातें, सात कलीसियाई युग, देखा, कलीसियाई कालों के सात सितारे, और ये सारे के सारे एक साथ पवित्र आत्मा के द्वारा एक मनुस्थिति एक साथ लाए गए। अब यही है जो मसीह का दास होने के लिए चाहिए। मसीह ने अपनी कलीसिया सात कलीसियाई कालों में बनाई, उसकी दुल्हन एक व्यक्ति, स्त्री, कलीसिया, सात कलीसियाई काल एक दुल्हन को बनाते हैं, कुछ इस युग के बाहर से, कुछ उस युग के बाहर से, और ये सब एक साथ मिलकर एक पैरामिड के रूप में बदलते जा रहे हैं, जैसे कि हनोक जिसने पैरामिड बनवाए, जो कि हम विश्वास करते हैं, और उनके ऊपर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं रखा गया, क्योंकि चोटी के पत्थर को अस्वीकार कर दिया गया। और हम इसे लेते हैं एक शिक्षा के समान नहीं, परंतु यहाँ केवल कलीसिया को समझाने के लिए कि ये परमेश्वर स्वयं को तीन में सिद्ध करता है, वो स्वयं को पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में, एक परमेश्वर के तीन कार्य क्षेत्र, वो स्वयं को न्यायोचितता में, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में सिद्ध करता है, अनुग्रह के सिद्ध कार्य आते हैं। वो स्वयं को तीन आगमनों में सिद्ध करता है, पहली बार अपनी दुल्हन को छुड़ाने में, दूसरी बार अपनी दुल्हन को लेने, तीसरी बार अपनी दुल्हन के साथ सहस्र शताब्दी में, और हर चीज तीन में सिद्ध की गई और सात परमेश्वर की आराधना का अंक है। परमेश्वर की आराधना सात में की गई और पूर्ण हो गई। अब सिद्ध और पूर्ण है। और अजीब बात थी, इसे अंदर लेने के लिए नहीं, परंतु केवल आपको दर्शाने के लिए। अंतिम हिरण जो मैंने मारा, उसके एक और पांच सींग थे और तीन दूसरी ओर। देखा, अनुग्रह और सिद्धता। और अब इस पर ध्यान दें कि मसीह परमेश्वर ने तीन बाइबलें लिखी हैं। पहली वाली आकाश में जो राशि चक्र कहलाते हैं, वहाँ थी। अब यदि आप अय्यूब की पुस्तक को नहीं जानते तो इस विषय में भूल जाएं, क्योंकि अय्यूब इसकी व्याख्या करता है, कैसे उसने ऊपर की ओर देखा और उसने आकाश में उन चीजों के नाम रखे। अब राशि चक्र में ध्यान दें, ये किससे आरंभ होता है। राशि चक्र में पहली चीज कन्या है। राशि चक्र में अंतिम चीज लियो सिंह है। मसीह का पहला आगमन कन्या के द्वारा, दूसरा आगमन सिंह, यहूदा के गोत्र का सिंह। तब हनोक ने पिछले दिनों में इसे पूरा किया, पिरामिडों को। और सही में हमारे पास इसकी पृष्ठभूमि के लिए समय नहीं है, और ये दर्शाने के लिए कि किस प्रकार वे पिरामिड कक्षों से होते हुए उभर कर आए और आदि आदि। ये अब सीधा सीधा अंत समय के लिए बोलता है। नाप के अनुसार अब वे राजा के कक्ष में हैं, परंतु चोटी का पत्थर कभी भी पिरामिड के ऊपर नहीं रखा गया, और ये वास्तुकला के आधार पर सही सिद्ध या चिना गया, यहाँ तक कि छोटा पतला सा ब्लेड भी। और वे नहीं जानते कि उन्होंने कैसे इसे बनाया, नहीं समझते। एक ब्लेड भी कभी उसके साथ से होकर अंदर नहीं जा सकता, जहाँ पर मसाला होना चाहिए और उसमें मसाला नहीं है। और ये इतने सिद्ध प्रकार से एक साथ रखे हैं, इसलिए यही है जबकि मसीह और कलीसिया एक हो जाते हैं, वहाँ कोई बीच में मसाला नहीं होता, उसके बीच में कुछ नहीं, केवल परमेश्वर और वो व्यक्ति, परमेश्वर मसीह और व्यक्ति। अब परंतु चोटी का पत्थर, उन्हें ये कभी नहीं मिला। आप जानते हैं केक का ये पत्थर उनके पास इंग्लैंड में है कि राजाओं का अभिषेक करे या उनकी ताजपोशी और आदि आदि, परंतु चोटी का पत्थर, ध्यान दें, अमेरिकन डॉलर पर, आप अमेरिकन डॉलर के नोट पर इसे देखेंगे, एक ओर बाई ओर अमेरिकन मोहर है, एक उकाब जिसके हाथ में भाले हैं, और दूसरी ओर ये संयुक्त राज्यों की मोहर कहलाती है, परंतु दूसरी ओर पिरामिड है और इसके ऊपर एक बड़ी आंख है, और यहाँ ये लिखा है एक महान मोहर। ये इस राष्ट्र में क्यों एक महान मोहर है, यहाँ तक कि हमारी अपनी राष्ट्र की मोहर से ऊपर। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं, आप जो भी करते हैं परमेश्वर उससे वैसे ही बुलवा लेता है। वो पापी से भी इसके विषय में बुलवाता है, वो राष्ट्र से भी इसके विषय में बुलवाता है, हर चीज को उसके विषय में बोलना है, चाहे आप इसका विश्वास करें या नहीं, ये ठीक वही है। अब ध्यान दें, उसमें एक आंख है, परमेश्वर की आंख, क्योंकि वो चोटी का पत्थर नहीं आया, चोटी की मोहर, क्योंकि उसको अस्वीकार कर दिया गया था, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, भवन के कोने का पत्थर, पिरामिड की चोटी की मोहर और ये सब। अब मैं नहीं चाहता कि कभी कभी ये लोग टेप, इन बातों को टेप कर लेते हैं और कलीसियाओं में भाइयों के मध्य में जाते हैं, दूसरी कलीसियाओं में, और जब वे ये करते हैं तब कभी कभी भाइयों पर गलत प्रभाव पड़ता है कि मैं भाइयों के विषय में कुछ कह रहा हूँ, परंतु मैं नहीं कहता। यदि आप सुन सकें और समझ सकें, समझे, मैं अपने किसी भाई के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भाइयों के विरोध में बोला जाना नहीं है, एक दूसरे के विरोध में। हमें एक दूसरे के लिए बोलना चाहिए, न कि एक दूसरे के विरोध में। परंतु जब मैं किसी विशेष संस्था जैसे प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट या आदि आदि, तो वे कहते हैं, देखो वो इसके विरोध में है। मैं वहाँ के किसी भाई या बहन के विरोध में नहीं हूँ, वो तंत्र जो भाईचारे को अलग अलग करता है उसके विरोध में मैं बोलता हूँ। परमेश्वर के बालक एक परिवार हैं, और न कि विभिन्न झुंड, और उनमें से कुछ कहते हैं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये प्रेस्बिटेरियन है और मैं मेथोडिस्ट हूँ। देखा, अब ये नहीं है, देखिए, ये उस संस्था का तंत्र है जो भाईचारे को तोड़ता है, समझे। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप किसी पुरानी हल्की दिखने वाली नाव में नदी पर जाएं और झरने को पार करने का यत्न करें और मैं जानता हूं कि ये काम नहीं करेगी, तब भी मैं आप पर चिल्लाऊं ना आपको डांटूं, मैं आपको उस नाव में से बाहर निकालने का यत्न कर रहा हूं, क्योंकि ये नाव टूटने वाली है और आप पानी में अकेले पड़े रह जाएंगे। परंतु जो नाव में है वो भाई नहीं, परंतु मैं भाई पर चिल्ला रहा हूं, ये उसे जताने के लिए कि क्या होने जा रहा है। भाई, ये सारे तंत्र जो मनुष्य ने अपने यत्न से प्राप्त किए हैं ये समाप्त होने ही है, बस उन्हें आना ही है। हमें भाईचारे की एकता में आना है, जो कि मेरा जीवन का उद्देश्य, एकता में लाने का यत्न करना, न कि संस्थाओं को तोड़ना, परंतु वे अपने अपने विचार छोड़ दें और प्रत्येक नया जन्म पाया हुआ मसीह भाई हो जाए। यही विचार है, यहीं पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, यदि भाई लोग ध्यान देंगे, मैं हमारे बहुत सारे भाई, यहाँ तक कि हमारे फुल गॉस्पल रैंक्स में, वे विश्वास नहीं करते कि बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और लूथरन और उनके पास भी अवसर है। परंतु मैं, अब हो सकता है वे ठीक हों, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जो युग यहाँ है, लूथरन युग, और ये युग जो यहाँ है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सार्दिस युग है, और तब फिलेडेल्फियन युग है मेथोडिस्टों के वास्ते, और तब पेंटिकॉस्टल लुदेकियन युग। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वे युग हैं और परमेश्वर ने इन प्रत्येक युगों में से चुने हुए लोगों को लिया है, और इसमें जैसा कि इब्रानियों 11 कहता है कि वे हमारे बिना सिद्ध नहीं हैं, समझे, परंतु अब कलीसिया इसमें से आई है, हर समय छोटी संख्या में आ रही है इस पेंटिकॉस्टल युग तक। अब जिस कारण मैं ये कह रहा हूँ, ताकि आपको इसका बोध हो जाए कि बहन ने किस प्रकार का स्वप्न देखा है, और उसका स्वप्न निश्चय ही जो मैं सिखा रहा हूँ उसके साथ तुलनात्मक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, वे सारी बातें जो आपको पहला पत्र 6वां और 7वां पद आपको बताता है, वो आपके विश्वास के द्वारा लाया जाता है, जो कि पहला है। अब मैं कहता हूँ, वे लोग जो इन बातों का अपने में बिना नया जन्म दिए होने का दावा करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने असभ्य टिप्पणी कर दी और इस प्रकार से कह दिया कि काली चिड़िया अपने में मोर का पंख लगाने का प्रयास कर रही है और स्वयं को मोर बना रही है, वो ये नहीं कर सकता, ये तो स्वाभाविक पंख होने चाहिए जो कि उसी में से उगा हो, उसके अंदर का उस पंख को बाहर उगाए। और सदा ही मैंने अपनी बहनों पर बाल कटाने के और अपने चेहरों को चमकवाने और ये सब आदि आदि के लिए कड़ाई से दोष लगाया है, मुझ पर बहनों के लिए कड़े रुख के लिए दोष लगाया गया है। ये नहीं कि मुझ में इसके विरोध में कुछ है, मैं नहीं कहता कि स्त्रियां अच्छी स्त्रियां नहीं हैं, वे जो आवारा या ऐसे ही कुछ हैं, मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है, परंतु ये है, जब वो बाहरी बहुत कुछ बनावटी दिखाती है तो भीतर भी कुछ बनावटी है, समझे, जिसे मसीह के द्वारा भरा जाना है, क्योंकि बाहर जो भीतर है उसे दर्शाता है, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे, आप समझे। और जहाँ मसीह को अंदर होना चाहिए और परमेश्वर की चिंता और दूसरी चीजों की चिंता बजाय बहुत सारा बनावटी आडंबर, और आप जानते हैं हरी पलकें और अमानवीय दिखना और ये सारी चीजें, मैं उसके लिए नहीं कहता और मैं विश्वास नहीं करता कि बाइबल भी कुछ कहती है, इसलिए केवल जो हम हैं वैसे ही हों। ध्यान दें, अब यदि उसकी उंगलियों में नाखून नहीं है और कुछ लगाना चाहती है, यदि उसके दांत नहीं है और कुछ की आवश्यकता है, और हाथ नहीं है और हाथ की आवश्यकता है, बाल नहीं है और आपको कुछ आवश्यकता है, और आपके पास जो अन्य अन्य चीजें नहीं है, ये फर्क है। परंतु जब आपने अपने अच्छे अच्छे दांतों को निकलवा दें, क्योंकि वे इतने चमकदार नहीं है जितने की होने चाहिए, तो आपने गलत किया। यदि आपके लाल बाल हैं और आप काले चाहते हैं और आप जाकर उन्हें काला रंगते हैं, क्योंकि इसलिए आपने गलत किया। जी हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। परंतु विशेष बात, इसके लिए कोई वचन नहीं है, केवल अपने बाल कटाना, इसके लिए वचन है, इसके लिए बहुत सारे हैं, इसलिए तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह से निश्चित हों कि ये ठीक है। अब हमारी बहन ने स्वप्न में, उसने स्वप्न देखा कि वो ठीक है, पहले वो परेशान थी, जीवन में संघर्ष करने का यत्न करना और इस प्रकार बढ़ने का क्या लाभ, यदि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा ग्रहण करें और ये हमारे पास नहीं है। अब मैं नहीं सोचता वे इसे टेप कर रहे हैं, परंतु यदि वे नहीं कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो ये केवल कलीसिया के लिए है, समझे। अब यदि कोई भाई इसे पकड़े रहे हैं और आप मेरी आवाज सुनते हैं, भाई इसके लिए स्मरण रखें कि मैं अपनी कलीसिया को शिक्षा दे रहा हूँ। आप सदा अपनी सभा के समक्ष हैं, टेपों को परखें। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी सभा इन्हें सुने तो उन्हें ना सुनने दें। परंतु मैं इस छोटे झुंड से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई नेविल और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा रखवाली और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ बातें हैं, हो सकता है आप बहुत ही असहमत हों इससे। इसलिए यदि जैसा मैंने सदा कहा इस तली हुई मुर्गी को खाने के विषय में, जब आपको हड्डी मिलती है तो आप मुर्गी को फेंक नहीं देते, आप केवल हड्डी को फेंकते हैं। इसलिए सदा ऐसा ही करें। चेरी खाते हुए बीज आते हैं तो आप चेरी को नहीं फेंक देते, आप केवल बीज फेंकते हैं। इसलिए इसे सुनते हुए ऐसा ही करें। अब मैं विश्वास करता हूँ कि वो कारण कि पवित्र आत्मा के विषय में इतनी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि ये ठीक से सिखाया नहीं गया। मैं विश्वास करता हूँ कि बपतिस्मा बस ये कहकर सिखाया गया है बपतिस्मा, परंतु तब जैसे आप कहते हैं तो चालित वाहन। परंतु अब इस कलीसिया में मेरे पास बहुत सारे मिस्त्री हैं और मैं एक चीज के विषय में नहीं जानता। इसलिए भाइयों, यदि मैं कोई गलती कर दूं, मैं तो ध्यान रखें मैं मिस्त्री नहीं हूं, तो उसमें कुंडलियां, प्लग और पॉइंट बिंदु और वाल्व हर चीज होती है जिससे वाहन बनता है। और जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात करते हैं तो इसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं, समझे, इसके साथ बहुत कुछ चलता है। और यहाँ पर जो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ये प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पवित्र आत्मा है, समझे। पतरस ने कहा पहले विश्वास। अब इसे बहुत ध्यान से देखें, हम इसे कुछ मिनटों के लिए सिखाने जा रहे हैं। अब विश्वास आपका पहला है, और अपने विश्वास में सद्गुण बढ़ाते जाओ। अपने सद्गुण पर समझ, अपनी समझ पर संयम, अपने संयम पर धीरज, अपने धीरज पर भक्ति, अपनी भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, और तब प्रेम। और कोई भी जानता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, समझे। अब इससे और तब इसे सात कलीसियाई कालों में लाओ। परमेश्वर सात कलीसियाई कालों में मसीह के लिए दुल्हन बनाता है। फिलेडेल्फिया और थुआथीरा और पिर्गमन और स्मुरना और इफिसुस से होते हुए एक कलीसियाई काल, जो यीशु ने कहा यदि दूल्हा पहली घड़ी में आता यानी सातवीं घड़ी में, तो ये सारी कुंवारियां जाग गई होती। वे जागी, इफिसुस, स्मुरना, पिर्गमन, थुआथीरा, सार्दिस, फिलेडेल्फिया और लुदेशिया की कुंवारियां। क्या आपने ध्यान दिया कि ये सातवां युग था जब वो आया और इन कुंवारियों को जगाया, ये उन सबको नीचे से होते हुए वापस लाया, समझे। क्योंकि इसमें इन वर्षों युगों में होते हुए उसने एक दुल्हन बनाई, जन्म पाई हुई दुल्हन पृथ्वी पर, मसीह के लिए प्रजात दुल्हन। और ठीक इसी प्रकार उसने इस दुल्हन को प्रजात किया, उसने व्यक्तियों को प्रजात किया। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि जब बहन का स्वप्न बताया जाता है। अब ये बातें यहाँ पूर्ण रूप से मसीहों में होनी चाहिए, इससे पहले कि पवित्र आत्मा उन्हें मोहर बंद करे, इससे पहले कि ये चोटी पर आए और एक पूर्ण इकाई बने। अब हमारी बहन का स्वप्न, उसे चिंता थी कि उसके पास पवित्र आत्मा है या नहीं। जब वो फोल्डिंग पलंग पर लेट गई, जहां उसका पति अखबार पढ़ रहा था, और उसके पास छोटे छोटे बालक थे जैसे कि मेरे पास हैं, और वे हमेशा शोर और कुछ कुछ करते हैं, और इसलिए इसमें वो सो गई लगभग 10 या 15 मिनट के लिए, और उसने स्वप्न देखा और वो इसे कभी नहीं समझ सकी। यह लगभग एक वर्ष पहले उसे ये स्वप्न हुआ, लगभग जब तक ये संदेश नहीं सिखाया गया, तब मैंने इसे सिखा रहा था, तो ये उसे वापस स्मरण आया, और उसने देखा कि वो प्रार्थना कर रही है। स्वप्न देखने के पहले वो फर्श पर चल फिर रही थी और अपने हाथों को मल रही थी और सोच रही थी, प्रभु क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, क्या आप मुझे प्रमाणित कर सकते हैं। कुछ कहते हैं क्योंकि वो चिल्लाया था, या कुछ ने कहा क्योंकि मैं अन्य अन्य भाषा में बोला हूँ, और हम इन सब में विश्वास करते हैं, परंतु क्या ये वास्तव में मेरे पास है। मैं इन सब बातों में विश्वास करती हूँ, इन सद्गुणों में, अन्य भाषा में बोलना और चिल्लाना और सब प्रकार के प्रदर्शनों में, मैं इसके हर बात में विश्वास करता हूँ। परंतु ये इसके बिना वहाँ है तो वहाँ कुछ गड़बड़ है, समझे? अब समझिए, आप देखिए, आपके पास एक कवच है, ध्यान दें। और वो इसके विषय में चिंतित थी, इसलिए वो फोल्डिंग पर आड़ी आड़ी लेट गई, जहाँ उसका पति अखबार पढ़ रहा था, और वो निद्रा में चली गई। और उसने स्वप्न देखा कि वो एक पहाड़ पर है, और इस पहाड़ में सबसे अच्छा, मेरे सामने कागज नहीं है, परंतु मैं सोचता हूँ कि ये इस प्रकार है। उसने स्वप्न देखा कि उसने एक चट्टान का बॉक्स जैसा, एक ढांचा सा पहाड़ की चोटी के ऊपर रखा देखा, और उसका पति ठीक उसके पीछे है। और उसने देखा एक बड़ा पुरुष काम करने वाले कपड़े पहनकर वहाँ खड़ा हुआ है, उसकी अस्थियां चढ़ी हुई हैं, और इतना शुद्ध जल जो उसने कभी ना देखा, उसे उलीच और बॉक्स में डाल रहा है। और ये चट्टान का बॉक्स पहाड़ की चोटी पर स्थित है, और ये चट्टान का बॉक्स इस पानी को नहीं रोक पा रहा था, और वो वहाँ से निकल पड़ा और केवल सारे कूड़े करकट और लकड़ियों को उबाल दिया, और हर चीज को जो वहाँ थी, और पहाड़ पर से नीचे आ गया, और वो उसके पैरों पर लुढ़क गया, और वो वहाँ उन चीजों में खड़ी थी, केवल वो उसके चिपके नहीं। और तब उसने पूछा कि संदूक उसे क्यों ना रोक सका, और उस पुरुष ने कहा कि वो जल नहीं है, ये पवित्र आत्मा है, और कहा इसे कोई नहीं रोक सकता। और कहा तब वो वापस गया और जाकर दूसरी बाल्टी लाया, और वो मधु से भरी हुई थी, और मधु को वहाँ पलट दिया, और कहा अब ये इसे रोक लेगा। और उसने सोचा कि वो संदूक जो था, चट्टान का संदूक, फटने को था और मधु बिखर जाएगा, परंतु ये नहीं हुआ, और अंत में आपस में चिपक गया और उसे रोक लिया। वो घूमी और पहाड़ से नीचे उतर गई। पहाड़ के नीचे की ओर जाते हुए वो पहाड़ की तलहटी पर रुकी और मुड़कर देखा, और उसने देखा इस शुद्ध जल की पांच धाराएं, वो बाहरी वस्तुओं से दूषित नहीं हुई जिससे वो निकल कर आ रही थी, फिर भी स्वच्छ पारदर्शी जल तेजी से आ रहा था। तब वो धीरे हो गया, और फिर वो लगभग ओझल हो गया, और उसे आश्चर्य हुआ कि ये पहाड़ की तली तक भी कभी पहुँचेगा पांच धाराएं, और वो जाग उठी। मैं सोचता हूँ ये यहीं पर समाप्त है, बहन शेपर्ड, है कि नहीं? अब इससे अधिक नहीं। मैंने पत्र उठाया और खोला, इससे पहले कि मैं इसे पढ़ता, मैंने इसका स्वप्न देखा। अब इस प्रकार से स्वप्नों का अर्थ बताया जाता है। अब आप में से बहुत से अपने अपने स्वप्नों के साथ मेरे पास आए और स्वप्नों के विषय में मुझसे बातें की। मैं कहता हूँ एक मिनट रुकिए, अभी आपने पूरा नहीं बताया है, समझे? और जाकर उसे फिर लें। अब यदि आप नहीं बता सकते कि आपने क्या स्वप्न देखा, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इसका अर्थ सही है या नहीं, समझे? आपको करना है, आपको स्वप्न देखना ही है, दर्शन को स्वप्न दिखाना है। और जब आप उस स्वप्न को जो उस व्यक्ति ने देखा है देख लेते हैं, और उसके बताने से पहले उन्हें बता देते हैं, तो आप स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र में भी ऐसा ही है। एक बार डेनियल, क्या ये ठीक बात है, नहीं है? कहा जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। और तब ये होता है कि मैं इस पर विचार करता हूँ, समझे? परंतु आप सदा स्वप्न देखते हैं। अब यदि अर्थ सही है और वो व्यक्ति आपको स्वप्न बताना आरंभ करता है, आप बस उसे रोक कर कहते हैं एक मिनट रुकिए, और ये ऐसे ऐसे था और ऐसा ऐसा, और तब आप कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, समझे? उस दिन एक व्यक्ति मुझे वो स्वप्न बताने का यत्न कर रहा था जो उसने देखा था। उसने कहा ठीक है, उसने कहा। मैंने कहा अब भाई आपने दूसरा भाग क्यों छोड़ दिया है? उसने कहा कौन सा दूसरा भाग? मैंने कहा आपने स्वप्न देखा कि आपने एक पत्थर हवा में ऊपर फेंका और मैंने उस पर गोली दागी और कुछ मेरी आंख में गिरा। उसने कहा भाई ब्रणम, ये बिल्कुल सही है, और उन्होंने इसका अंतिम भाग कल ही लिया। इसलिए आप इस स्थिति में हैं, आप क्यों नहीं इसका सत्य बताते हैं? परंतु आप देखिए, ये सदा पीछे की ओर प्रकट होता है। क्या बताता है? आपका स्वप्न जो आपने देखा, तब आप जानते हैं कि ये सही है। अब यहाँ पर उसके स्वप्न का अर्थ है, वो पवित्र आत्मा के विषय में परेशान थी। अब इस सब में जो उन्होंने देखा, संदूक पहाड़ की चोटी पर है, चट्टान है, चट्टान का संदूक, प्रायश्चित की चट्टान। अब जैसा यीशु ने इस पवित्र शास्त्र में कहा, उसने कहा, पतरस ने कहा, यीशु ने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? एक ने कहा तू एलिया है, मूसा है, और आदि आदि। उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। अब कुछ लोग कहते हैं, अब कैथोलिक कलीसिया कहती है, रोमन कैथोलिक कलीसिया कहती है कि उसका वो चट्टान क्या थी जो यीशु ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। उन्होंने कहा ये पतरस के ऊपर था और पतरस वो चट्टान था, क्योंकि पतरस का अर्थ छोटी चट्टान, और इस छोटी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वे पतरस के ऊपर प्रेरित अनुक्रम पर वे कलीसिया बनाते हैं। तब प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहती है ये गलत है कि ये तो उसके अपने ऊपर है वो कलीसिया बनाता है। अब असहमत होने के लिए नहीं, परंतु जो मेरा अपना दृष्टिकोण है इसे देखने का, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि उसने ये कभी भी पतरस के ऊपर नहीं बनाई, ना ही ये उसने अपने ऊपर बनाई, परंतु ये पतरस के प्रकाशन पर कि वो कौन था। समझे, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, क्षमाऊं तू धन्य है योना के पुत्र, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, ना ही किसी धार्मिक विद्यालय ने, नहीं समझे, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये प्रकट किया है। तू पतरस है, इस पत्थर पर, इस मान लेने पर, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यही रहा है, प्रत्येक कलीसिया काल के पास वो प्रायश्चित की चट्टान थी, इस लुदिसिया की प्रायश्चित की चट्टान तक। और अब आप पवित्र कलीसिया नहीं बना सकते, पवित्र कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है, यह पवित्र संस्था, पवित्र आत्मा इसमें प्रचारा जा सकता है, परंतु उसमें आप अच्छे और बुरे विभिन्न प्रकार के लोगों को पाते हैं और हर प्रकार की वस्तु, इसलिए संस्था इसे नहीं रोकेगी। आप नहीं कह सकते कि ये हमें मिल गया, इनमें से किसी के पास नहीं है ये, नहीं श्रीमान, पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तियों पर उंडेला गया, ये व्यक्तिगत है, इसलिए वो चट्टान अंतिम दिन की ये पेंतिकोस्तल कलीसिया जिसने की पवित्र आत्मा पाया, जो उन्होंने पहले पाया, इन सारे युगों में से होते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, परंतु नाप में नहीं जो अब उनके पास है, क्योंकि ये पहले वाले का पहली स्थिति में वापस आना है। जैसे कि हम चिराग दान लेते हैं, अल्फा और ओमेगा, पहले चिराग को कैसे जलाते थे और ये ऊंचाई और ऊंचाई पर गया और धीमा होता गया और तब फिर वापस आया, समझे, पहला और अंतिम आदि आदि। अब परंतु इस कलीसियाई काल में संदेश कलीसिया में उंडेला गया, परंतु कलीसिया दे स्वयं में कुल मिलाकर, जैसा कि ये आराधनालय है, हम कहेंगे यही जहां वो कलीसिया में आती है, ये आराधनालय पवित्र आत्मा का आराधनालय नहीं है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। वे व्यक्ति जो इस कलीसिया में आते हैं पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, वे आराधनालय हैं जिनमें पवित्र आत्मा है, परंतु कलीसिया झुंड की देह में नहीं, इसलिए ये बाहर निकल गई। परंतु ये मनुष्य कौन है जो पानी उंडेल रहा है, कलीसिया का दूत, संदेश कलीसिया में उंडेल रहा है, परंतु जल क्या कर रहा है, वो अपने अंदर की गंदगी को उबालकर बाहर फेंक रहा है जो उसमें थी। पवित्र आत्मा यही करता है, इसे उबाल देता है। अब मधु यानी शहद भाईचारे के प्रेम को दर्शाता है, भाईचारे की प्रीति जो ये युग है, मैं आपको ये भाईचारे की प्रीति बताते हुए आ रहा हूँ, समझे, भाईचारे की प्रीति, वो युग जिसमें हम अब रह रहे हैं। अब आप कह सकते हैं, देखिए, मैं निश्चय ही भाई नेविल को पसंद नहीं करता, या निश्चय ही मैं भाई जोन्स को पसंद नहीं करता, मैं अमुक अमुक भाई को पसंद नहीं करता, या ऐसा ही कुछ और, परंतु उसे जरा कुछ हो जाए, आपका हृदय टूट जाता है, ये आपको लगभग मार देता है, समझे। हम भाईचारे की प्रीति पा सकते हैं और एक दूसरे के लिए भावना, समझे, परंतु लोगों के झुंड को बनाए रखने के लिए आप क्यों उस भाई की चिंता करते हैं, क्योंकि आप उसके साथ यहाँ वेदी पर रोटी तोड़ते हैं, जैसा आज आप आज रात्रि करेंगे, आप उसके साथ संगति करते हैं, आप उससे हाथ मिलाते हैं, आप उसके साथ आराधना करते हैं, वो आपका भाई है, और वो देह में कुछ कर सकता है जिससे कि आप असहमत हो, क्योंकि आप केवल एक प्रकार से साथ साथ रहते हैं, उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, परंतु अपने हृदय की गहराई में यदि उस भाई को कुछ हो जाता है तो आप लगभग मरने को हो जाएंगे, या उस बहन को। मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, एक समय मैं युवा था और अब मैं बूढ़ा हूँ, मैंने इसे इस आयु में होते देखा है, लोगों को कहते सुना, अच्छा मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं, और उस व्यक्ति को कुछ हो जाए ये लगभग उसे मरने जैसा कर देता है। वो सोचता है, ओ परमेश्वर, मैं अपने मूल्यवान भाई को फिर से बिना मित्रता किए नहीं जाने दूंगा। देखा आपने, देखिए, ये भाईचारे का प्रेम है, ये ऐसा लगता है कि ये नहीं है, परंतु ये होता है, ये मधु, ये चिपकता है। अब इतना होते हुए वो वहाँ से आती है पहाड़ के नीचे की ओर, पहाड़ की तलेटी पर, अब ये महिमा युक्त जल पहाड़ पर से पांच धाराओं में होकर उमड़ रहा है। अब पांच अनुग्रह का अंक है JESUS FAITH GRACE, समझे? पांच अनुग्रह का अंक है। पांच धाराएं यहाँ से निकल रही थीं इस द्रोण में से या नीचे होते हुए, और इनमें से प्रत्येक युग में वो प्रायश्चित की चट्टान थी। संत जो सो रहे हैं और प्रतीक्षा 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 इस युग तक कर रहे हैं, समझे? परंतु जल्द ही पवित्र आत्मा मसीह में से उंडेला जाने को है, जो आएगा और कलीसिया को मोहर बंद कर देगा। तब कलीसिया उठा ली जाएगी। ये परमेश्वर की पूर्ण इकाई होगी, मसीह के लिए दुल्हन, जो सब चीजों का प्रधान होगा। अब आप मेरी बात समझे? अब वो आश्चर्यचकित थी, वो अपने स्वप्न में इधर उधर घूम रही थी। क्या ये छोटी धारा कभी नीचे तले तक जाएगी, समझे? ये सूख रही थी। अब वो अपने में होते हुए वो स्वयं, अब यहाँ जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें, वो यहाँ अपने लिए भटक रही है। क्या उसके पास पवित्र आत्मा था? मैंने कुछ दिनों पहले से इसे कहना आरंभ कर दिया था, ये सोचते हुए कि इसे समझाने हेतु कलीसिया काफी आत्मिक है। और अच्छा है कि मैं टेप को यहीं बंद कर दूं, परंतु क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भाइयों के बीच में जाए। परंतु आप अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप प्रेत आत्माओं को निकाल सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं, और फिर भी आपके पास पवित्र आत्मा ना हो। क्या चेले आनंद करते चिल्लाते हुए वापस नहीं आए थे, क्योंकि प्रेत आत्माएं उनके अधीन थी? और यीशु उनमें यूहन्ना भी था। क्या यीशु ने उस दिन नहीं कहा जब वो आया कि उस दिन बहुत सारे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु क्या मैंने आपके नाम से प्रेत आत्मा को नहीं निकाला, बड़े बड़े कार्य किए? मैं कहूँगा, मैं तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये चीजें पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं है, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। अब आप कहते हैं, भाई बहनों, क्या हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए? बिल्कुल, ये परमेश्वर का वरदान है। परंतु परमेश्वर के वे वरदान उनके अंदर बिना इन सद्गुणों के अविश्वासी के लिए ठोकर बनते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया, इन्हें पहले होना ही है। और जब आपके पास विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति, तब पवित्र आत्मा नीचे आता है और आपको इकाई के रूप में मोहरबंद करता है, वैसे ही जैसे उसने कलीसियाई युगों को एक इकाई के समान मोहरबंद किया। जिस प्रकार से वो अपनी दुल्हन बनाता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति को बनाता है, उसी सामग्री से बनाया, जैसे हवा को आदम में से बनाया, उसमें एक और की पसली से। यहाँ वो चीज है जो आप में पहले होनी ही चाहिए। आप इनकी नकल नहीं कर सकते, आप उसका अनुकरण नहीं कर सकते, वे परमेश्वर की ओर से ही भेजे हुए होने चाहिए और परमेश्वर द्वारा उत्पन्न। नकल केवल भ्रम का कारण होती है। ऐसा जैसे मैंने कहा, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक बाज पंडुकी के पंख लगाए हुए बैठा है और कहता है कि देखो मैं एक पंडुकी हूँ? वो पंडुकी नहीं है, वो बाज है, गिद्ध। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये काली चिड़िया अपने पंखों में मोर का पंख लगा के और कह रहा हो, देखो ये कुछ है जो उसमें ऊपर से लगा है, परंतु ये उसके अंदर से बाहर आना चाहिए और ये मसीहत को उत्पन्न करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, हमारी बहन के पैर भीगे हुए थे जब वो तलैटी में पहुंची। हम सब बहन शेपर्ड को जानते हैं एक प्रेमी होने के नाते। उसका घर खुला है, महिला और भाई। मैं चिंता नहीं करता कि यदि ये आवारा है, भिखारी है, या ये जो कुछ भी है, वे उसे खिलाएंगे, कुछ भी कीजिए, वे उसकी सहायता करेंगे। ओ, परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है उसकी नेव का भाग। अब इस पाठ को सीख लें। यहाँ जो उसके साथ गड़बड़ी है, मुझे इस पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ जो भाई ब्रैनम के आराधनालय के साथ गड़बड़ी है, अब आप देखें कि दो विभिन्न प्रकार के विश्वास हैं और दो प्रकार के सद्गुण हैं, जैसे कि मैंने उस दिन लिया था, दो प्रकार की समझ, दो प्रकार के संयम। एक सोचता है ये मना है, जो उनमें है ये वो नहीं है जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है, ये वो ईश्वरीय बस में ना आने वाली मनोदशा जो आप में एक और है, पीछे से है झगड़ा, धैर्य और आदि आदि इसकी नकल एक छलावा स्वाभाविक विश्वास एक स्वाभाविक सद्गुण स्वभाव के द्वारा दिया गया संयम और ये सारी चीजें स्वभाव से मिली हुई हैं और हमारे विश्वास का बड़ा भाग बुद्धि का विश्वास वचन के सुनने के द्वारा हमें परमेश्वर की बुद्धि वाली मान्यता पर लाता है परंतु यदि ये ऊपर से आता है भाई यदि ये यहाँ पर टकराता है तो ये ईश्वरीय आत्मिक विश्वास है तब ये विश्वास क्या करता है ये विश्वास केवल वचन को पहचानता है इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कहता है ये केवल वचन को पहचानता है क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और अब भी वचन परमेश्वर है और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया और जब वचन स्वयं को हमारे विश्वास में उंडेल रहा है तो हमारा बुद्धि का विश्वास आत्मिक प्रकाशन बन जाता है और इस नेव पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा कलीसिया में सम्मिलित होने की बौद्धिक धारणा को मत देखिए उसकी बौद्धिक धारणा परंतु प्रकाशन पर जब वे अनुग्रह की धाराएं उस बुद्धि के विश्वास में उंडेली जा रही हैं जो आपके पास है तब इस पर एक आत्मिक प्रकाशन मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते समझे ये दर्शाता है कि वे इसके विरोध में होंगे परंतु वे कभी प्रबल नहीं होंगे कितनी शानदार बात है अब देखिए विश्वास ये पांच धाराएं मेरे पास यहाँ एक चौक का टुकड़ा था परंतु मैं समझता हूँ कि वो इसे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता परंतु पांच धाराएं आप देखिए यह मनोदशा से एक साथ निकलकर आ रही हैं। ये पवित्र आत्मा था जिसने इफिसुस की कलीसिया को बनाया ये पवित्र आत्मा था जिसने स्मुर्ना की कलीसिया को जन्म दिया ये पवित्र आत्मा था जिसने अंधकार के युगों में पिरगमन कलीसिया और थुआथीरा कलीसिया को दिया गया ये पवित्र आत्मा है जिसने दुल्हन को बनाया वो चुनी हुई है इसने इसे सारी संस्थाओं के तंत्र में से खींचकर बाहर निकाला है इस प्रकार से इन युगों में होते हुए और ये चुनी हुई है यीशु मसीह की पहले से ठहराई हुई दुल्हन जिसे पवित्र आत्मा ने बाहर निकाला है चुनी हुई है ये पवित्र आत्मा ही इस युग में था वो काल ये सबसे ऊपर पवित्र आत्मा और अब प्रत्येक व्यक्तिगत में ये सद्गुण ये चीजें समझ और संयम है ये आपके विश्वास में बढ़ाई गई हैं। तब जब चोटी का पत्थर आता है पवित्र आत्मा इसे एक साथ जोड़ देता है वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है यही कारण है कि आजकल ये बहुत कम है मैं यहाँ देखूं, मैंने यहाँ कुछ मूल पाठ लिख रखे हैं। आइए देखें, मैंने उस बहन के स्वप्न के लिए यहाँ एक चित्र बना रखा है समझे आप इसे यहाँ से नीचे नहीं देख सकते अब पवित्र आत्मा से आकर क्या आता है तब वो आपको अलौकिक विश्वास देगा आत्मिक विश्वास ये यहाँ तले में है तब आत्मिक विश्वास केवल वचन को पहचानता है इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है इससे कोई लाभ नहीं होता वो केवल वचन जानता है यदि कोई कहता है आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए वो विश्वास केवल वचन जानता है कोई कहता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई बात नहीं है वो विश्वास केवल वचन जानता है ये वास्तविक आत्मिक विश्वास है आप समझे ये ठीक बात है समझे ये केवल वचन जानता है और तब ये नंबर एक है नंबर एक आपके पास आ रहा है आपका बौद्धिक विश्वास ठीक यहाँ पवित्र आत्मा आता है आपके बौद्धिक विश्वास में आता है और इसे आत्मिक विश्वास बना रहा है तब आत्मिक विश्वास केवल वचन को पहचानता है अब नंबर दो और तीन तब आपके पास आत्मिक होगा आपके पास पवित्र आत्मा होगा और ये सारी चीजें आपके अंदर मोहर बंद कर देगा जैसे ही वो पवित्र आत्मा इसे ढांकता है आपके विश्वास से लेकर पवित्र आत्मा तक आपको मसीह में मोहर बंद कर देता है तब आप एक हो जाते हैं आमीन मेरे सामने से ये चीज हटा दो ये आपके हाथों को लगती है आप एक हो जाते हैं देखिए आप और मसीह एक संग रहते हैं उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ पिता मुझ में है मैं तुम में और तुम मुझ में समझे तब ये प्रभु परमेश्वर की मोहर बंद इकाई है और अब तब वे प्रमाणित और यथास्थान पर हैं। जब ये समय होता है वे परमेश्वर के प्रमाणित किए हुए पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं। क्या आपको मत्ती की पुस्तक के 17वें अध्याय में याद है, पहले से 5वें पद तक यीशु रूपांतरण वाले पर्वत पर? आपने मुझे कहते सुना है, तुम इसकी सुनो। वो उपदेश जो मैंने यहाँ लगभग एक वर्ष पहले प्रचार किया था वो इतना प्रचलित हो गया, तुम इसकी सुनो। इफिसियों 1:5 भी, पुत्र को यथा स्थान पर रखना, परमेश्वर ने हमें लयपालक पुत्र होने के लिए ठहराया है। एक परिवार को देखिए, जब एक पुत्र उसमें उत्पन्न होता है तो वो पुत्र होता है, परंतु उस पुत्र का एक शिक्षक उसके पालन पोषण के लिए होता है। और यदि वो पुत्र कभी भी ठीक प्रकार का पुत्र ना बने, वो कभी भी वारिस नहीं होता। परंतु यदि वो सही पुत्र है और वो पुत्र जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा, तब उस पुत्र को लेपालक बनाया जाता था, यथा स्थान पर रखा जाता था। वो जो पिता का था उसका वारिस हो जाता है। और परमेश्वर यही उस रूपांतरण वाले पर्वत पर कर रहा था। जब उसने स्वयं को सही पुत्र सिद्ध कर दिया, तब उसने अपने पुत्र को लिया, समझे, और सारी परीक्षाओं में स्थिर रहा था। वो उसे रूपांतरण वाले पर्वत पर ले गया और उसे ढांप लिया। आप जानते हैं, पुराने नियम में वे पुत्र को लेकर उसे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करते थे और उसे जनता के समक्ष लाते थे, और यथा स्थान पर रखने के लिए उनका उत्सव होता था, या हम इसे लेपालक कहते हैं। गलतियों में मैं सोचता हूँ कि पौलुस ने इसका लेपालक पुत्रों की नहीं उल्लेख किया है। अब पुत्र को यथा स्थान पर रखने के द्वारा सेवक लोग समझेंगे और आत्मिक बाइबल पढ़ने वाले, इस पुत्र को यथा स्थान देना। दूसरे शब्दों में पुत्र एक पुत्र था जब वो उत्पन्न हुआ। यही जहां हमारे पेंतिकोस्तल लोग गलती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परिवार में उत्पन्न होना, ये ठीक बात है, परंतु तब हमें सही प्रकार के बालक होना चाहिए, सही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया, समझे। अब पुराने समय में जब व्यक्ति अपने पुत्र के विषय में सोचता था और वो चाहता था कि वो सही प्रकार का पुत्र हो, तो वो सबसे अच्छा शिक्षक जो वो ढूंढ सकता था लेता था, सबसे अच्छा शिक्षक, क्योंकि वो इच्छा रखता था कि उसका पुत्र अपने पिता के समान हो, समझे, इसलिए वो सही शिक्षक लेता। अब यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर किसी सबसे अच्छे शिक्षक के लिए सोचे, तो परमेश्वर जो हमारा पिता है कितना सोचेगा। अब उसके पास बिशप, कार्डिनल और याजक लोग कभी नहीं थे, उसके पास पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होने के लिए है, और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, और वो कलीसिया में है, और वो पिता के पास संदेश ले जाता है। क्या हो यदि पिता शिक्षक आकर और कहे, ठीक है पिता, अब वो किसी भी प्रकार का शिक्षक नहीं लेने जा रहा है जो अपनी टोपी में पंख लगाना चाहता हो, और आप जानते हैं जिसे हम पिता कहते हैं, और यदि मैं पिता को कुछ बताना चाहता हूँ कि वो छोटा लड़का जो भी है आवारा है, परंतु यदि मैं पिता को बताता हूँ तो पिता मुझे पालन पोषण करने वाला दे सकता है, वो सही प्रकार का शिक्षक नहीं होगा। सही प्रकार का शिक्षक ईमानदार होता है जो सत्य बताता है, पवित्र आत्मा सत्य बताता है जब वो हमें परमेश्वर के सम्मुख लाता है। जी हाँ, इसलिए वो आता है। आप क्या सोचते हैं वो ये कहने के लिए आज लज्जित होगा, तुम्हारी पुत्रियाँ सब जो बाल कटाती हैं और तुम उन्हें नहीं बताते, तुम्हारे पुत्र इतने संगठित विचारों के हैं कि वे साधारण रूप में एक दूसरे को देख नहीं सकते, और ये वो इसके लिए वो उसके लिए वो अपना लेते हैं, उसे कितना लज्जित होना चाहिए। परंतु वो शिक्षक आने के लिए कितना प्रसन्न होगा और कहेगा, ओ मेरे पिता, ये मेरा वास्तविक पुत्र है, ये बिल्कुल पिता के समान है, और वो ये कहने के लिए कितना प्रसन्न होगा, समझे। तब पिता घमंड से फूल जाता है और कहता है, ये मेरा पुत्र है। ठीक यही परमेश्वर ने रूपांतरण वाले पर्वत पर किया था। आप ध्यान दें, वहाँ मूसा और एलिया प्रकट हुए और पतरस इतना उत्तेजित हुआ, कुछ अलौकिक हुआ था, पतरस उत्तेजित हो गया। उसने कहा, आओ हम 3 मंडप बनाएं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। जबकि वो बोल ही रहा था, परमेश्वर ने उसे चुप करा दिया। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, तुम उसकी सुनो, समझे। परमेश्वर ने स्वयं को पीछे रखा और कहा, ये मेरा पुत्र है। मूसा ने व्यवस्था को दर्शाया, भविष्यवक्ताओं ने उसकी सत्यता को दर्शाया। हम उसकी व्यवस्था से जीवित नहीं रह सकते, हम उसकी न्यायशीलता के द्वारा जीवित नहीं रह सकते। मैं न्यायशीलता नहीं मांगता, मैं अनुग्रह चाहता हूँ, न्याय नहीं। मैं उसकी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, मैं उसकी न्यायशीलता को पूरा नहीं कर सकता, परंतु मुझे उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था और न्यायशीलता उसमें आकर मिल जाती है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये है वो, यही वो एक है। अब पुराने नियम में जब उस पुत्र को लेपालक किया गया या उसके परिवार में यथा स्थान पर सुसज्जित किया गया तो उसका नाम चेक पर उतना ही प्रभावी है जितना उसके पिता का। जी हाँ श्रीमान, उनके पास तब उन दिनों में उनके पास अंगूठी हुआ करती थी, एक चिन्ह अंगूठी मुद्रा, और वे उस पर थूकेंगे, उसे यथास्थान पर रखता है, ये उसकी अंगूठी मुद्रण थी। ये केवल ऐसा था, वो अपने पिता की अंगूठी पहनता है, उसकी अंगूठी मुद्रा, और वो उतना ही अच्छा है जैसे उसका पिता। अब जब यीशु आज्ञाकारी था, यीशु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उसे यथास्थान पर रखा, ये वो है। अब जब सदस्य पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जन्म लेता है और अपने में इन सद्गुणों को प्रमाणित कर देता है, ताकि परमेश्वर सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भाईचारे की प्रीति और भक्ति उसमें देख सके, तब परमेश्वर उसे मोहर बंद करता है या उसे यथास्थान पर रखते हैं। और वहाँ जब आप देखते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तब इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। अब आप में से कुछ बैप्टिस्ट लोग जो अनंत सुरक्षा पर जाना चाहते हैं, अब यदि आप उस स्थिति में आते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, यह अनंत सुरक्षा है यदि आप उस स्थान तक आएंगे। परंतु केवल ये कहने के लिए, कोई भी कहता है कि मैं जाकर बैप्टिस्ट कलीसिया में सम्मिलित हो जाऊंगा, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मेरे पास अनंत सुरक्षा है, ये गलत बात है। आपका अपना जीवन प्रमाणित करता है कि आपके पास ये नहीं है। जब तक कि ये वहाँ नहीं है और परमेश्वर ने आपको लेपालक बना लिया है और आपको अपने राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद कर दिया है, तब उसमें से कोई बाहर निकलना नहीं है। आप अनंत सुरक्षित हैं। विश्वास करें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि आप सब और आपके भक्ति वाले सद्गुण छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद है। मैं विश्वास करता हूँ कि एक दुल्हन पहले से ठहराई हुई है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि एक उसकी कलीसिया बिना दाग और झुर्री के होगी। मैं पहले से चुन लिए जाने पर विश्वास करता हूँ। वो दुल्हन पहले से ठहराई हुई है, उसे वहीं होना है। मैं आशा करता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ, यही समझे, मैं उसके साथ हूँ। ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के साथ कार्य करता हूँ, जब तक कि ये बातें जो परमेश्वर द्वारा स्वीकृत हैं और परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद नहीं हो जाती हैं। पवित्र आत्मा वहीं पर है, वहीं परमेश्वर का वास्तविक कार्य है। ये छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद है, ये उसका स्वप्न था। मैंने सोचा ये सुंदर था, इसलिए जब वो ये करती है, जब वो कलीसिया या व्यक्ति इस स्थान पर आता है, कलीसिया वही होने जा रही है। मैं इसे और अच्छी तरह कह दूं ताकि आप इसे समझ सकें। कलीसिया उस स्थिति में आने के लिए पहले से ठहराई जा चुकी है। मैं उसके साथ होना चाहता हूं। केवल एक ही विधि है कि मैं उसके साथ हो सकता हूं, कि मैं उसका भाग हो जाऊं। मैं कैसे इसका भाग हो जाऊं? इसमें होने के द्वारा। मैं इसमें कैसे सम्मिलित होता हूं? बपतिस्मे के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 12, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, एक देह, उसमें बपतिस्मा लिया। परंतु आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं लगा सकते, जैसे मैं अन्य भाषाओं में बोला, ये मेरे पास है। आप यहाँ से बाहर जाकर और क्रोध और शपथ खाना और ये वो करते हैं, ये मोर के पंख को भुजंगे में लगाना है, समझे? आप ये नहीं कर सकते। आपका अपना जीवन ये सिद्ध करता है कि ये नहीं है। जब ये चीजें आप में परमेश्वर के द्वारा कार्यवंत होती हैं, तो आप मोहर बंद हो गए। तो इसको ऊपर से पहनने के विषय में कुछ नहीं है, आप अपने आप से हैं। यही जब दर्शन, सिद्ध, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का कार्य, हर चीज प्रकट होती है, क्योंकि आप और मसीह एक हो गए। मैं आशा करता हूं कि ये ऐसे ही है, समझा जाता है, आप और मसीह एक हो गए। मेरे पास कुछ और था, मैंने यहाँ लिख रखा था, मैं इस पर विचार करना चाहता था। हमें जीवन के स्थान पर लाता है, तब आप हो जाते हैं, अनंत जीवन पा लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर यूनानी शब्द कोश है, द इम्फेटिक डायलॉग। मैंने उस दिन इस पर अध्ययन किया था। अब यूहन्ना 14 में या यूहन्ना 3:16 हम इसमें कहते हुए पाते हैं, सदा का जीवन लो। दूसरे स्थान में कहता है, अनंत जीवन लो। परंतु यूनानी भाषांतर में हिब्रू में यह कहता है, जीवन बिना अंत का। यूनानी शब्द में A I N I O N लो, लगभग एओन के समान। एओन एक स्थान जो कि नहीं हो सकता, ये वो अंक है जिसे गिना नहीं जा सकता, ये करोड़ों अरबों खरबों से आगे है, परंतु ये एक एनियन है, समय का है, अनंत जीवन है, और इसके लिए अंग्रेजी शब्द अनंत यानी एटर्नल है। हम जानते हैं कि ये अनंत एनियन यानी जीवन बिना अंत के है, समझे? और यदि आपके पास बिना अंत का जीवन है तो आप कैसे नष्ट हो सकते हैं? आप अनंत का एक भाग हो गए हैं, और केवल एक ही चीज अनंत है। शैतान अनंत नहीं है, नहीं, वो शैतान हो गया। नरक अंत नहीं है, नरक उत्पन्न किया गया, ये अनंत नहीं है। और ये देह अनंत नहीं है, ये उत्पन्न की गई थी, परंतु परमेश्वर का आत्मा अनंत है, इसका कोई आरंभ नहीं या इसका कभी कोई अंत नहीं है। केवल एक ही विधि है कि हमें अनंत जीवन मिल सके, उसे यूनानी शब्द में जोई, जिसका अर्थ परमेश्वर का जीवन है। हम परमेश्वर का भाग बन जाते हैं जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं, और हमारे पास एनियन जीवन है। इसलिए वो भाग जो हम में जीवित है, वो उसका शब्द पहचानता है, यहाँ और वहाँ से वो एनियन है, जीवन को पहचानता है, जीवन बिना अंत का। ये परमेश्वर का अपना जीवन हम में है, आमीन। उस दिन यात्रा पर मेरा विचार विमर्श यहोवा विटनेस के साथ हो रहा था। अब किसी के विश्वास का अपमान करने के लिए नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे यहोवा विटनेस वाले मत परिवर्तन किए हुए यहाँ बैठे हैं। हमारे आराधनालय का एक ट्रस्टी यहोवा विटनेस का था, और वो और उसका परिवार बचाया गया था। उसका पिता एक रीडर था, भाई वुड्स, और वे उसके सारे भाई और बहन अब लगभग सारों ने आकर पवित्र आत्मा प्राप्त किया, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उन्हें बता रहा था कि उन्होंने क्या किया और वे क्या समझे, इसने ये किया। अब यहोवा विटनेस अपनी पुस्तक में ये कहती है कि वो सांस जो आप लेते हैं वो प्राण है। अब ये बात सही नहीं हो सकती, वो सांस जो आप लेते हैं वो प्राण नहीं है। यदि ये आपका है, आप एक समय आप प्राण का एक प्रकार थे, अगली बार आप किसी और ने वो प्राण सांस में ले लिया, देखिए आप कहाँ होंगे। अब श्वास एक हवा है, और हवा से आप अपने नथनों में सांस लेते हैं। अब वे पीछे से वचन लेते हैं, और परमेश्वर ने उसके नथनों में दम फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यदि वो एक मनुष्य था तो इससे पहले वो कौन सी सांस ले रहा था जब परमेश्वर ने उसमें जीवन को फूका, समझे? वो किस प्रकार की सांस ले रहा था, वो जीवित पुरुष? भाई यदि ये ऐसा है तो फिर हर पशु एक जीवित प्राणी है, क्योंकि वे मनुष्य के प्राण की सांस लेते हैं और हमारे प्राण और सब एक साथ। तब यीशु को मरना ही नहीं था, पशु का बलिदान ही पर्याप्त होता, समझे? इसलिए भाई विवाद बनता ही नहीं है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसने अनंत जीवन का सांस उसमें फूका, आमीन, तब वो जीवित प्राणी बना, एक प्राण जो मृत नहीं हो सकता। अब आप ध्यान दें, अब हम कोहनी तक आपके हाथ को शहद में डालने वाले हैं। ध्यान दें, अनंत जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और वो अनंत प्राणी हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने फूंका, वो नहीं जो प्रकृति ने किया, परंतु वो जो परमेश्वर ने किया। जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। तब आप उससे कहते हैं, भाई बहनों, आदम तो मर गया, परंतु स्मरण रखें, इससे पहले आदम मरता उसके पास एक मेमना था जिसने उसे छुड़ा लिया। हालेलुया! जिसको उसने पहले से जाना उसने उन्हें बुलाया, उसके पास उन्हें छुड़ाने के लिए एक मेमना था, वो एक प्रतीक था। आदम गिर गया, तब आदम के लिए मेमना दिया गया, क्योंकि अनंत परमेश्वर ने उसके नथनों में पहले ही फूंक दिया था और वो जीवित प्राणी हो गया। वो परमेश्वर का पुत्र था, उसकी सांस ऐसी नहीं जैसे कि अफ्रीकन शब्द। इसके लिए अब सही यूनानी शब्द क्या है मैं नहीं जानता, परंतु अफ्रीकन शब्द वो जो कहते हैं अमोया, जिसका अर्थ वायु, एक ना दिखने वाली शक्ति। पशु अमोया की सांस लेते हैं, पापी अमोया की सांस लेते हैं तो फिर अनंत जीवन के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? यदि हम में अनंत प्राण सांस के द्वारा फूंक दिया गया, हम क्यों अनंत जीवन के लिए संघर्ष करते हैं? भाई ये उल्टा ही पड़ता है, समझे? ये बस इसे नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर ने विशेषतः आदम पर अनंत जीवन का श्वास फूंका और वो परमेश्वर के साथ अनंत व्यक्ति हो गया। उसके पास परमेश्वर जैसी सामर्थ्य थी। वो व्यवसायी ईश्वर था, वो पृथ्वी का ईश्वर था, न कि अब स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का ईश्वर। और एक दिन परमेश्वर के पुत्र फिर से ईश्वर हो जाएंगे। क्या यीशु ने ऐसा नहीं कहा? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? तब यदि तुम उन्हें जिन्हें परमेश्वर ने ईश्वर कहा उन्हें पुकार सकते हो जिसके पास परमेश्वर आया, तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? समझे? अब हम कुछ गहराई में जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान दें। अब हम यहाँ हैं। अब वो एक परमेश्वर का पुत्र है, परंतु वो एक गलती करता है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है। अब स्मरण रखें, आदम ने धोखा नहीं खाया। बाइबल ऐसा कहती है, पहला तिमोथियस 3, आदम बहकाया न गया परंतु स्त्री बहकाई गई और अपराधनी हुई। आदम हवा के साथ चला गया क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। वैसे ही जैसे मसीह शैतान के द्वारा बहकाया न गया परंतु अपनी दुल्हन के साथ मृत्यु में चला गया। वो दुल्हन के साथ होने के लिए चला गया ताकि वो कलीसिया को बचा ले। आदम जानता था कि वो गलत है, वो बस हवा के साथ चला गया, समझे? परंतु उनके लिए एक मेमना दिया गया ताकि वे छुड़ाए जा सकें। और आज ये मेमने वे पहले से ही परमेश्वर के द्वारा जाने गए और परमेश्वर ने बुलाया कि एक बचाने वाला है। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय जब तक मेरा पिता ही उसे ना खींच ले, और वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। क्या ये ठीक बात है? इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले एक मेमना दिया गया जहां उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और एक मेमना दिया गया प्रत्येक के लिए जो पुनरुत्थान में जाने वाले हैं, उनके लिए अनुग्रह का मार्ग तैयार करता है। एक दिया गया मेमना, आदम का मेमना। अब ध्यान दें, जैसे आदम को एक मेमना दिया गया था, अब ये आज कलीसिया है। मेरा अर्थ उस कलीसिया से नहीं। आप जानते हैं कि क्या, मैं अधिक धार्मिक होने के नाते नहीं कहता, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अर्थ नहीं है। मैं यहाँ ये करने हेतु नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले ही इसकी व्याख्या कर चुका हूँ। मैं यहाँ सहायता के लिए हूँ, परंतु मैं जो करने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप जानते हैं क्या, वास्तव में ये कलीसियाएं नहीं है, केवल एक ही कलीसिया है। ये तो धर्मशालाएं या सराय, समझे? ये धर्मशालाएं हैं। मुझे कुछ नहीं मिला, ये ठीक बात है, परंतु मैं आपको कुछ ही मिनटों में सिद्ध करना चाहता हूँ कि वे केवल मात्र धर्मशालाएं हैं। आप मेथोडिस्ट की धर्मशाला से हैं, प्रेस्बिटेरियन की धर्मशाला से हैं, या पेंटिकॉस्टल धर्मशाला, जहाँ तक ये चलता है, आप समझे? धर्मशालाएं, समझे? आप नहीं कर सकते। देखिए, वास्तव में कलीसिया धर्मशालाएं हैं जहाँ पर लोग एक ही विचार प्रवृत्ति से इकट्ठे हो गए हैं, परंतु कलीसिया एक ही है और आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप इसमें जन्म लेते हैं और जब आपने इसमें जन्म ले लिया तो आप इसके सदस्य हो गए, जैसा कि मेरा परिवार है। मैं ब्रणम परिवार में 53 वर्षों से हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी इसमें सम्मिलित होने के लिए नहीं कहा। क्यों? मुझे परिवार में सम्मिलित नहीं होना। मैं जन्म से ही ब्रणम हूँ और आप कलीसिया में उत्पन्न हुए हैं। अब ये दूसरे धर्मशालाएं हैं। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा? जी हाँ श्रीमान, एक दिन मैं घास की छटाई कर रहा था और मैं उस महान पवित्र कैथोलिक कलीसिया के विषय में सोच रहा था जो वे इसे कहते हैं, और मैं मशीन से घास काटते हुए चल रहा था और किसी चीज ने मुझे रोका, जैसे कि सस्ताई से कहा हो उसे वो मत कहो। मैंने चारों तरफ देखा और मैं फिर घास काटने लगा। उसने मुझे फिर रोका, कहा उन्हें वो मत कहो। कहा वे दूसरों की तरह धर्मशालाएं हैं, वे कलीसियाएं नहीं है, केवल एक कलीसिया है, समझे? वे धर्मशाला के सदस्य हैं। आप उस धर्मशाला में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। वो कलीसिया जिसमें आपने जन्म लिया, आप नए जन्म के द्वारा उसके सदस्य बनते हैं। तब परिवार का एक सदस्य, एक भाई या बहन जो उसमें है। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ दूं एम्फेटिक डायलॉग से, यहाँ कुछ है एम्फेटिक डायलॉग का एपोकलिप्स प्रकाशित वाक्य 17:3 और इस पर जरा ध्यान दें, ये कैसे पढ़ा जाता है, कितने सुंदर ढंग से इसकी उससे तुलना की गई है। प्रकाशित वाक्य 16:17, ठीक है। अब आइए एक मिनट इसे पढ़ें, इसे बहुत ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 17:3, और उन सात दूतों में से एक सात कटोरे आए और मुझसे बोले, मैं शतकोष में से पढ़ रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। और हम सब जानते हैं कि ये वेटिकन है, यह हमारे पास आवर संडे विजिटर है, ये कैथोलिक कलीसिया से है, यह हमें ठीक वही बता रहा है जो ये है, समझे। और इसके उत्तर में ये कहा गया, परंतु एक मिनट प्रतीक्षा करें, कहा यहाँ सब प्रकार के नाम है, कहा 666 बनेगा। मैंने कहा एक मिनट, कहा हो सकता है आपका नाम 666 बनाए, परंतु मैंने कहा मैं सात पहाड़ों पर बैठकर संसार पर राज्य नहीं कर रहा। यदपि देखा, देखिए ये ठीक बात है, समझे। दिखाया बड़ी वेश्या का न्याय जो बहुत से पानियों पर बैठी है, पानियों। प्रकाशित वाक्य 17:15, लोगों की भीड़ और जातियां हैं, समझे, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। अब ध्यान दें, और वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। अब एम्फेटिक डायग्लॉट, अब और मैंने किरमिजी कपड़े पहने पशु पर स्त्री को बैठे देखा जो ईश निंदा के नामों से भरा हुआ था। अब किंग जेम्स में कहता है निंदा के नामों से भरा हुआ। एक मिनट, मैं इसे यहाँ से ले लूँ, एक मिनट। प्रकाशित वाक्य 3, ठीक है, ये यहाँ है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य मेरा 17:17। अब तीसरे पद से सुनिए, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, अंग्रेजी में इसी प्रकार से है, परंतु मूल यूनानी द डायग्लॉट में से इस प्रकार पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 17:3, अब सुनिए, और वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने एक स्त्री को किरमिजी रंग के पशु पर बैठी देखा जो ईश निंदा के नामों से भरा हुआ था। इसमें बहुत ही अंतर है, निंदा के नाम और ईश निंदा के नाम, ये क्या है। और हम और अब वो वेश्याओं की माता थी, हम सब ये जानते हैं। अब ये क्या है, आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक बात है, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया को लेगा, परंतु वो ईश निंदा के नामों से भरी पड़ी है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और वे सब जो अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं, ईश निंदा के नामों से। बहुत अंतर है निंदा के नाम और ईश निंदा के नामों। स्वयं को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं और स्वयं को संसार के समक्ष उपस्थित रखते हैं और ताश और पीने की दावतें और चलता रहता है और दावतें और हर चीज और सब प्रकार की चीजें, जब तक केवल एक ही कलीसिया है जिसमें आपने जन्म लिया है। आप उसमें तब तक नहीं आते जब तक आप मेमने के लहू से धुलकर और पवित्र आत्मा से मोहर बंद नहीं हो जाते। निंदा के नामों और ईश निंदा के नामों में क्या अंतर है, ये समझे। जब मैं यहाँ आने वाला था तो आज प्रातः मैंने इसे समझा, किसी चीज ने मुझे बताया कि अपने कमरे में जाकर दी डायग्लॉट को निकालो, नहीं ये केवल आज्ञा पालन था, बस अंदर गया और मैंने प्रकाशित वाक्य 17 निकाला। मैंने सोचा आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे पढूं, और मैंने पढ़ना आरंभ किया और जैसे ही मैं इस पर पहुंचा ये वहां था। मैंने पेंसिल लेकर इसे लिख लिया, मैंने कहा ये यहां पर है। अब यही है जो मुझे संस्थाओं के विरोध में चिल्लाने को वे करते हैं, ये वे ईश निंदा के नाम हैं जो अपने को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं और मसीह की कलीसिया और मेथोडिस्ट की कलीसियाएं और की कलीसियाएं, ये धर्मशालाएं हैं, कलीसियाएं नहीं, एक ही कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। और ये क्या है, यीशु मसीह की रहस्यमय देह जो पृथ्वी पर कार्य कर रही है, इन्हीं सभाओं के सदस्यों से जो मसीह की देह के सदस्य हैं, इन्हीं से बनी है। आपको इसमें जन्म लेना ही है, इसमें सम्मिलित नहीं होना है, और इसमें सम्मिलित होना ईश निंदा के नाम है। ये स्त्री उसकी शक्ति, और आप देखें कि ये इन सब लोगों को कहां ले जा रहे हैं जिनके धर्म के विषय में विभिन्न विचार हैं, और उन्हें अलास्का भेज दिया। आपने ये देखा है हमारे सारे विचित्र विश्वास, और ये क्या है, परिचित है कलीसियाओं की विश्व परिषद और कैथोलिकों के अपने बड़े बड़े कार्यक्रम जो अब वेटिकन में चल रहे हैं, वहाँ पर जहाँ वे यत्न कर रहे हैं, और ये सारे बिशप और आदि ये साम्यवाद से लड़ने की सहमति पर आने की चेष्टा कर रहे हैं। संसार साम्यवाद से लड़ रहा है और केवल कैथोलिकवाद में सम्मिलित हो रहे हैं, और ये आज के समान है। जैसे मैंने कहा, हम यहाँ पर हैं, हम लोग सोना हम लगभग दिवालिया हैं। हम आज से 14 वर्ष आगे तक के कर के पैसों से उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। हम इस पर कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। संसार का धन किसके पास है? कैथोलिक कलीसिया। इसने संयुक्त राज्य को कैसे उधार दिया? इन तंबाकू और विस्की की फैक्ट्रियों को चलाए रखना और आदि आदि। निश्चय ही वे इसमें से उधार लेंगे। जब वे ये करते हैं तो वे अपना जन्म सिद्ध अधिकार रोमन कैथोलिक कलीसिया को बेच देते हैं। हम एक में सम्मिलित हैं। देखिए, ये अखबार पढ़ने से भी अधिक स्पष्ट है। ये यहाँ पर है, समझे? वे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और आदि आदि हैं। स्वयं को परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं, कैथोलिक और ये सब प्रकार के लोग। क्या ये इस पशु की सामर्थ ईश निंदक नाम है? स्वयं को कहते हैं कि मैंने कहा बहुत समय नहीं हुआ कि मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने हेतु अस्पताल गया। मैंने कहा अब हम करने जा रहे हैं। वो मेरी माता थी। मैंने कहा हम माता जी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और उस स्त्री ने कहा पर्दा खींच दो। मैंने कहा क्या आप मसीह नहीं है? वो बोली हम मेथोडिस्ट हैं। मैंने कहा धन्यवाद। मैंने सोचा हो सकता है आप विश्वासी थे और मैंने अपने उधर से पर्दा खींच दिया, समझे? इसलिए यदि आप मसीह नहीं है तो अलग बात है, समझे? परंतु हम मेथोडिस्ट हैं। ये ईश निंदा है। वो पशु कलीसियाएं जो कलीसियाएं कहलाती हैं, कलीसिया नहीं है। मुझे पक्का हो जाने दीजिए, ये अभिलेख में है। वे कलीसियाएं नहीं हैं, वे धर्मशालाएं हैं। लोग उनमें सम्मिलित होते हैं, परंतु आप जीवित परमेश्वर की कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप इसमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाते हैं तो ये सारे सद्गुण आप में पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद हो जाते हैं। और इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है पाप कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। आप यहीं पर हैं। ओह, हम सारे दिन बातें करते रह सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? कलीसिया मसीह की रहस्यमय देह है, परमेश्वर की सांस के द्वारा जन्मी हुई। आप समझ गए? परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की श्वास के द्वारा जन्मी है। परमेश्वर ने आदम के नथनों में आत्मिक रूप में सांस भरी और वो जीवित प्राणी बन गया। ये आप जानते हैं कि पेंतिकोस्तल था, सच्ची पेंतिकोस्तल कलीसिया परमेश्वर की श्वास से जन्मी है। एक मिनट, मैं इस पर आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूं। एक मिनट मुझे जरा देखने दें। संत यूहन्ना, मैं विश्वास करता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, और ढूंढेंगे कि क्या परमेश्वर की कलीसिया है या नहीं। संत यूहन्ना, आइए देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये लगभग 16, 19, 20, ठीक है, यहाँ मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमें मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ दूँ और देखें कि कलीसिया परमेश्वर के श्वास से उत्पन्न हुई है कि नहीं, जैसे कि आरंभ में आदम। ध्यान दें, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ध्यान दें, पिता जिसने उसे भेजा वो उसमें गया, और यीशु जब उसने एक चेले को भेजा वो उसमें होकर गया। वही भेजता है। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। कलीसिया परमेश्वर की श्वास से जन्मी है। जब ये प्रतिमा स्वयं उस स्थिति में ढली, परमेश्वर ने अपना श्वास उन पर फूंका, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, तब आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप जिसमें चाहे सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु आप जीवते परमेश्वर की कलीसिया में जन्मे हैं। परमेश्वर की श्वास से जन्मे हैं। परमेश्वर ने उनके ऊपर फूंका और कहा तुम इसे लो, पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, आप वही हैं, ना कि आओ और सम्मिलित हो, अपना नाम वहाँ लिखा दो और अपनी सांझ की दावतें और जो सब इसके साथ चलता है। आप धर्मशाला में सम्मिलित हों। आप मेथोडिस्ट की धर्मशाला में, बैप्टिस्ट की धर्मशाला में, प्रेस्बिटेरियन की धर्मशाला, कैथोलिक की धर्मशाला, पेंतिकॉस्टल धर्मशाला, जिसमें भी चाहें सम्मिलित हो जाएं, परंतु आप एक धर्मशाला में सम्मिलित हो रहे हैं। परंतु जब आप परमेश्वर के बालक हो जाते हैं तो आप परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। अच्छा है कि इसे यहीं छोड़ दें, ठीक है। तब आप में परमेश्वर का जीवन भी है। यीशु ने कहा, एक मिनट, यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। अब देखिए उनका यीशु के साथ क्या विवाद था। उनका झगड़ा यीशु के साथ क्योंकि वो एक मनुष्य था और स्वयं को परमेश्वर बनाता था। वो परमेश्वर था, परमेश्वर मसीह में था, समझे। और उसने उन्हें बताया, उसने कहा मुझे मत देखो, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा पिता है और वो मुझ में रहता है, समझे। अब वे उस छोटे लड़के को देख रहे थे जो मरियम से जन्मा था, समझे। वो परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु परमेश्वर उस देह में था, वो परमेश्वर था। उसने कहा यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं तो मुझे दोषी ठहराओ, परंतु तुम में से कौन मुझ पर पाप लगाता है, वचन का अविश्वास। जो वचन परमेश्वर ने बोले क्या वे मुझ में पूरे नहीं हुए। पाप अविश्वास है। कौन मुझ पर पाप का दोष लगाता है, पाप अविश्वास है। मुझे दिखाओ यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं कार्य करता हूं, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कामों का विश्वास करो, वे मेरी गवाही देते हैं, नहीं तो पिता मुझ में अपनी गवाही देता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह में होकर संसार का स्वयं से मेल मिलाप कर रहा था। अब समझे आप। अब देखिए वही जीवन जो दाखलता में है डाली में भी है। आप उसमें कैसे सम्मिलित होने जा रहे हैं, आप नहीं हो सकते। अधिक समय नहीं हुआ, मैंने एरिजोना में भाई शेरिक के यहाँ आंगन में एक पेड़ देखा, उस पर 9 रसेदार फल थे। वो क्या था, वो संतरे का पेड़ था, एक नाभि संतरा, परंतु उस पर एक नींबू था, एक संतरा, एक खट्टा, एक चकोतरा, सब प्रकार के थे। मैंने खड़े होकर पेड़ को देखा, मैंने कहा भाई शेरिक आपके बताने का अर्थ ये था कि ये पेड़ संतरे का है। कहा निश्चय ही। और मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया। मैंने कहा मैं देखता हूँ चकोतरा यहाँ है और संतरा यहाँ है और खट्टा यहाँ है और एक नींबू यहाँ है और सारे के सारे दूसरे फल, ये कैसे आ सकते हैं। उसने कहा अच्छा आप देखिए ये सब इसमें साटे गए हैं। ओ, मैंने कहा अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अब आप इस चकोतरे और नींबू को तोड़ लीजिए, अब अगले वर्ष ये क्या उगाएगा, क्या ये अगले वर्ष संतरा उगाएगा इसमें। ओ नहीं, कहा ये फिर नींबू उगाएगा। ओ, मैंने कहा तेरा धन्यवाद हो, समझे। आप ये नहीं कर सकते, आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। परंतु उसने कहा हर वर्ष जब ये पेड़ बड़ा होगा और नई डाली निकालेगा तो उसमें संतरे ही लगेंगे। यदि दाखलता अपनी डाली निकालेगी, और हम क्या करने का यत्न करते हैं कि उसमें सदस्यों को मिला लिया और हम मसीहत के नाम के नीचे रहते हैं, क्योंकि हम, क्योंकि ये साधारणतः ये कहा जाता है हम रसेदार फल हैं मसीह कलीसिया। परंतु जब दाखलता अपनी दाखलता की डाली उगाएगी, ये बिल्कुल पहली वाली दाखलता के समान होगी। यदि उसने पहली दाखलता निकाली, इसके पीछे उन्होंने प्रेरितों के कार्यों की पुस्तक लिखी, यदि ये कभी दूसरी डाली उगाएगी तो ये अपने पीछे भी प्रेरितों के कार्यों को लिखेगी, ये ठीक बात है। इसलिए आप केवल धर्मशालाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु जब आप दाखलता से जन्म लेते हैं, आप में एक फल है, ये ठीक बात है, आप में एक फल है, परंतु आप इसके साथ क्या करते हैं। आप धर्म का भेष धरते हैं और उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, आप चिन्हों का इनकार करते हैं, आप आश्चर्य कर्मों का इनकार करते हैं, आप पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं, आप अन्य भाषाओं के बोलने का इनकार करते हैं, आप दर्शनों का इनकार करते हैं, आप भविष्यवाणी का इनकार करते हैं, आप चंगाई का इनकार करते हैं, और आप तब भी नाम के कहलाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र आत्मा ने कहा एक सामर्थ लोगों के झुंड ईश निंदा नामों से भरे हुए हैं, निश्चय ही स्वयं को मसीह कहते हैं, धर्म का भेष धरते हैं, परंतु सामर्थ का इनकार करते हैं। ऐसों से परे रहना, यही प्रकार है जो मूर्ख स्त्रियों को विभिन्न प्रकार की लालसाओं में ले जाते हैं। सब प्रकार की संस्थाएं कलीसिया, इस प्रकार की संस्था इतने भरे हुए हैं कि इस प्रकार की संस्था, यीशु मसीह की संस्था के विषय में क्या है, समझे। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हमने कलीसिया पर भार डाल दिया है, और अब आप वहीं पर हैं। आप कभी भी कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते, आप धर्मशाला में सम्मिलित हो सकते हैं। आप धर्मशाला के सदस्य हैं, लोगों के झुंड के, जैसे कि धर्मशाला है। हम इसमें विश्वास करते हैं, हमारे अपनी व्यवस्था है और हमारे अपने भेद हैं और आदि आदि। आप भी वैसे ही करते हैं जब आप कहलाने वाली कलीसिया में सम्मिलित होते हैं, परंतु आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप धर्मशाला की सदस्यता में शामिल हो गए हैं, परंतु कलीसिया में नहीं, क्योंकि आप कलीसिया में जन्मे हैं और दाखलता स्वयं। अब एक मिनट रुकिए, ध्यान दें। और मैं कुछ देर बाद बंद करूंगा। ध्यान दें, मुझे क्षमा करें। देखिए, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। यदि परमेश्वर इस दुल्हन का स्वभाव आत्मा के साथ बनाता है, तो ये व्यक्तिगत को आत्मा के साथ स्वभाव में बनाता है, समझे? तो आप राज्य में जन्मे हैं, और वही जीवन जो इस कलीसिया में था वो उस कलीसिया में है, और वो और वही जीवन जो छिलके दाग यीशु में था वही उस सदस्य में होगा जिसको उसने फिर उगाया। महिमा हो। उसी चीज के साथ जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ, तुम भी करोगे। सच्चे सदस्य मसीह की देह के, उसे किसी भी प्रकार का नाम नहीं दिया गया। व्यक्ति के वही कार्य सिद्ध करते हैं कि वो कहाँ से आया है। वहाँ एक जीवन है जो गवाही देता है कि वो क्या है, कि आप कौन सी सदस्यता, आप कौन सी देह से संबंधित हैं। मसीह की देह से, ठीक है। आप इसमें कहाँ सम्मिलित हुए? मैं इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, मैं इसमें जन्मा हूँ, समझे? तो उन्हें बताना नहीं है, वे जानते हैं कि क्या घटित हुआ। आप केवल, आप कैसे चिराग जलाकर और उसके ऊपर चिरागदान रख सकते हैं? उसने कहा, देखा, नहीं नहीं, जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं, तब वो जीवन, वही जीवन जो मसीह में था, तब आप प्राणों में रुचि रखते हैं। तब आप लोगों से निवेदन नहीं करते कि वेदी पर आओ, किसी के लिए विनती नहीं करते कि आकर उसके साथ जो वेदी पर हो खोजें। वो चीजें स्वतः ही उमड़ती हैं, क्योंकि ये आप में मोहरबंद है। आप परमेश्वर की इकाई हैं, पवित्र आत्मा के साथ मोहरबंद हैं। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ऊंचा कूदा और चिल्लाया, मुझे अजीब सी अनुभूति हुई, वो ठीक है, मैं कूद चुका और चिल्लाया और अजीब सी अनुभूति हुई, मैं अन्य अन्य भाषाओं में बोला। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा में बोलता है, निश्चय ही। मैंने अनुवाद किया है, जी हाँ श्रीमान, मैं भी विश्वास करता हूँ। परंतु ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ इसमें कोई रिसाव हो सकता है, यहाँ आपके धैर्य में रिसाव हो सकता है। कोई आपके मुख पर एक और मारे, क्या आप दूसरा फेर देते हैं? परंतु आप कहते हैं वो घृणित ढोंगी, तो ये कहीं पर से चूने लगा, अच्छा हो कि हम उसे जाने दें, ठीक है। परंतु आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है? परंतु जब आप मसीह की देह में मोहर बंद हो जाते हैं, आप आत्मा से भरे होते हैं और आप परमेश्वर के पुत्र होते हैं। ओ, मैंने इच्छा की इसे कुछ यहाँ से पढ़ने के लिए, मेरे पास केवल लगभग 10 मिनट और हैं, परंतु मैं, क्या आप इसे मेरे साथ अगले 10 मिनटों में सुनेंगे? मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा ईमानदारी से, दाल नहीं जलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, समझे? यदि हम इसे कुछ मिनटों के लिए पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा है। चलो चलें, मेरे पास कुछ थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पर जो मेरे मस्तिष्क में अभी अभी आई हैं, मैं वो कहना चाहता हूँ। आइए संत यूहन्ना का 3 अध्याय निकालें, अनंत जीवन के विषय में बात कर रहा है। आइए जरा मालूम करें कि ये यहाँ अनंत जीवन की समस्या के विषय में क्या कहता है और परमेश्वर का जीवन। अब यहाँ पर ध्यान दें, फरीसियों में से निकोदीमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर आया है, कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वे सन्हेदरीन की सभा, उन्होंने पहचाना कि वो परमेश्वर का पुत्र था, वे ये जानते थे, यहाँ उनका सरदार था उसे ये बता रहा है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि परमेश्वर का वही जीवन तुझ में से प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं कि तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी अपनी नहीं है, ये परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ये सिद्ध करके दिखा रहा है। परमेश्वर का जीवन आप में से प्रवाहित हो रहा है, आप ध्यान दें। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ओ प्रभु, जब तक तुम मेरी कलीसिया में सम्मिलित ना हो। ओ देखिए, आप इस पर से कैसे हट गए, देखा, समझे? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, देखिए, फिर देखिए, समझे? वापस आ रहा है, देखा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द नहीं सुनता, उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदीमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? भाइयों देखो, एक डीडी पीएचडी एलएलडी, समझे, और इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हम इन बातों को जानते हैं, हमने इन्हें देखा है, हम ये जानते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। कलीसिया में शामिल होने वाले समझे, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ, अब यहाँ पर सुनिए, अब ध्यान दें, अब कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इसे समझिए, आप जानते हैं, एक बार उसने कहा तुम मसीह के विषय में क्या समझते हो, वो पुत्र कौन है, उन्होंने कहा दाऊद का पुत्र। उसने कहा तो फिर क्यों उसने उसे आत्मा में कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, वो कैसे उसका प्रभु और उसका पुत्र हो सकता है। किसी मनुष्य ने उससे कुछ नहीं पूछा। प्रकाशित वाक्य में उसने कहा मैं ही दाऊद की जड़ और वंश हूँ, समझे, मैं ही दाखलता और डाली हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं आरंभ से पहले हूँ, आरंभ में था और मैं ही उसका वंश भी हूँ।
Here he said, no man has come down from heaven, but the Son of Man, which now
अब यहाँ उसने कहा कोई मनुष्य स्वर्ग से नहीं उतरा केवल मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। एक बार एक महिला ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि मुझे इस बात का उत्तर दें। कहा यीशु गतसमनी बाग में किससे प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा वो किस विषय में बात कर रहा था, जब वो कहता है कोई मनुष्य स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहाँ पर वो घर की छत पर खड़े हुए निकोदीमस से बातें कर रहा है और कहा मैं स्वर्ग में हूँ, क्या ये ठीक बात है? आज रात्रि के लिए इसे छोड़ दें, आप क्या कहते हैं, अब बहुत देर हो रही है। ओ प्रभु, इस दोपहर बाद इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आप कलीसिया में कैसे आते हैं? जन्म किस से? परमेश्वर की सांस से। मुझ में फूंक जीवते परमेश्वर का आत्मा, मुझ में फूंक, ये मेरी प्रार्थना है, केवल पवित्र आत्मा फूंका जाए, ओ क्योंकि परमेश्वर का श्वास। ये क्या है? परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद होना, ये जानते हुए कि जब मैंने पहले स्वीकार कर लिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जिया, तब अपने विश्वास में मैं सद्गुण भक्ति सद्गुण बढ़ाता हूँ, तब अपने सद्गुण में मैं वचन की समझ मिलाता हूँ, अपनी समझ में मैं संयम स्वयं को बस में रखना मिलाता हूँ। मैं ये पसंद करता हूँ, मेरा देश ये तेरा है, मेरे प्राण को संयम का ताज पहना दे, सागर से चमकने वाले सागर तक धैर्य, ओ प्रभु, परखा हुआ, आप चिंता ना करें, शैतान आपके लिए उन्हें परखेगा। अब मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, समझे, मैंने सद्गुण समझ संयम को मिला लिया है, अब मुझे धैर्य को मिलाना है, मुझे अब भी पवित्र आत्मा नहीं मिला, तब मैं धैर्य को मिलाने के पश्चात मैं भक्ति को मिलाता हूँ। आप जानते हैं कि ये क्या है? परमेश्वर के समान मैं ये मिलाता हूँ, मैं स्वयं से दुर्व्यवहार नहीं करता जैसे एक सज्जन मसीह को चलना चाहिए, चलिए इसे ऊपर से ना पहने, मुझ में कुछ है, परमेश्वर का प्रेम उफान मार रहा है, देखा देखा, नहीं कहता मैं लड़के इसे कर सकते हैं, परंतु हो सकता है अच्छा हो कि मैं ना करूं। ओह ओ, जो भी है ये वहाँ है, ये जन्म है, मैंने जन्म लिया है इसमें 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 इसमें, और तब परमेश्वर का प्रेम मसीह नीचे आता है और इस सब को सेवा कार्य के लिए मुझ में मोहर बंद कर देता है, समझे। तब वो क्या करता है जब वो मुझे पवित्र आत्मा देता है? ये आपको स्वयं में अलग स्थान में कर देता है, आप पर छाप देता है, समझे, तब आप एक भिन्न व्यक्ति हो जाते हैं, तब आप संसार के नहीं रह जाते, समझे, आपका पहनावा भिन्न, आपके कपड़े भिन्न, ये बाहरी पहनावा नहीं, नहीं नहीं, आपको अनोखा और असाधारण और गोल गले वाला कॉलर और एक लंबी औपचारिकता, नहीं नहीं, आप ये नहीं करते, भौतिक रूप में आपका पहनावा, जैसे ये केवल आत्मिक पहनावा है जो महत्व रखता है, आपको विवाह का वस्त्र पहना दिया गया है, आप क्या हैं? यीशु के समान, ध्यान दें, उस पर छा गया था और वो उनके सामने वहाँ रूपांतरित हो गया था और उसके वस्त्र सूर्य के समान चमक रहे थे, वो उस स्थिति में था, यीशु परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र को यथा स्थान पर रख रहा था, समझे, और तब मूसा आता है, तब एलिया आता है, और पतरस ने कहा, आप जानते हैं कि ये अच्छी बात है कि यहीं रहें। देखिए मनुष्य कैसे पाता है और अलौकिक हो गया। कहा, आओ हम तीन मंडप बनाएं, आओ एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। और इससे पहले वो बोल चुकता, परमेश्वर ने सब चीजें बंद कर दी। कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इन सब बातों में मैंने जो मूसा से पूछी और मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, न्याय भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसने उन सबको मिला दिया। तुम इसकी सुनो। अब मैं दृश्य से बाहर जाऊंगा, केवल इसकी सुनो, केवल इसकी सुनो। ओ प्रभु, कितनी सुंदर बात है। तब जब हम इन योग्यताओं को प्राप्त कर लेते हैं और परमेश्वर के सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं और परमेश्वर की चीजों से, तब पवित्र आत्मा नीचे उतरता है और हमें परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद कर देता है। चिंता न करें, हर कोई जान जाएगा कि आपके पास है। आपको ये नहीं कहना होगा, परमेश्वर की महिमा हो, मैं जानता हूँ कि मुझे मिल गया, मैंने अन्य अन्य भाषा बोली है। परमेश्वर की महिमा हो, मैं जानता हूँ कि ये मेरे पास है, आत्मा में मैं नाचा हूँ एक बार। आपको इस विषय में एक भी शब्द नहीं कहना है, हर कोई जान जाएगा कि ये आपके पास है। आप चिंता ना करें, ये स्वयं अपनी गवाही देगा, वो मनुष्य के मध्य में जाना जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए आज प्रातः यहाँ होने के लिए मैं प्रसन्न हूँ और इस संगति के समय के लिए। सुनिए, हमारा मामूली आराधनालय छोटा है और तब भी हमारे पास लोगों के लिए स्थान नहीं है जो यहाँ आते हैं। हम संस्था नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि हर संस्था के साथ संगति करते हैं। केवल यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप यहाँ आना चाहते हैं और आप, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम हर संस्था और हर व्यक्ति को चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक संस्था में लोग हैं जो मसीही हैं। वे मसीह में भाई और बहन हैं। इसलिए हमारे पास कोई फीता नहीं है, सम्मिलित होने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल एक मसीही होना है। जैसे कि ई हावर्ड कैरल कहा करते थे, हमारे पास कोई नियम नहीं, केवल प्रेम, कोई पुस्तक नहीं, केवल बाइबल, कोई मत नहीं, केवल मसीह। और ये ठीक बात है, आइए और हमसे मिलिए। हम आनंदित हैं कि हम पूरे सुसमाचार का विश्वास करते हैं, वचन के हर बिंदु का। हम ठीक उसी प्रकार विश्वास करते हैं। हम इसमें कुछ नहीं मिलाते, न ही इसमें से कुछ निकालते हैं, न ही किसी संस्था का मसाला मिलाते हैं। हम केवल इसे वैसे ही रहने देते हैं जैसा कि ये है। और आपको पाकर हम सदा आनंदित हैं। आप आए और हमारे साथ हों जब कभी आप आ सकते हैं। हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल जो भी करने के लिए कहती है, हम उसका विश्वास करते हैं। हम अपनी निर्बलताओं को भूल जाते हैं और पीछे छोड़कर आगे की ओर, उस उच्च बुलाहट के निशाने की ओर बढ़ते हैं। अब एक बात और, क्या आप इसे कहने की अनुमति देंगे? बीते परसों प्रातः आप सूचना पट पर ध्यान देंगे कि वहाँ एक दर्शन है। मुझे एक दर्शन मिला था, ये लगभग 5 बजे का समय था। मेरी पत्नी पीछे है, वो जानती है, या 6 बजे। मैं उठा था, मैं बालकों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए उठा। मेरे पास ये अब और तब भी थे। आप जितने यहाँ हैं सब जानते हैं कि ये कभी असफल नहीं हुए, ये पूरी तरह से सिद्ध हैं, समझे, वे कभी असफल नहीं होते। और मैंने सोचा कि मैं सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति था जो मैंने कभी देखा हो। मैं सूर्य में खड़ा था, SUN, और एक बहुत बड़ी सभा को प्रचार कर रहा था। मैं जरा ये देखना चाहता हूँ कि ये टेप हो रहा था। एक विशाल जनसभा, और वे जंगल में बैठे हुए थे और सूर्य का उजियाला उन पर चमक रहा था, थोड़ा यहाँ वहाँ, और वचन को ले रहे थे। और मैं प्राय सदा बहुत लंबा, बहुत देर लंबा प्रचार करता हूँ, और मैंने इतने लंबे समय तक प्रचार किया कि सभा शारीरिक भोजन के लिए भूखी हो गई, और वे उनमें से कुछ थक गए, इसलिए वे उठकर बाहर कुछ भोजन लेने के लिए चले गए, बाहर जाना आरंभ हो गए। मैंने कहा, मत जाओ, मत जाओ। मेरे पास दो चरम स्थान थे जहां पर मैं पहुंचना चाहता था, जिन पर मैं अपने उपदेश में पहुंचना चाहता था और प्रभु ने मुझे दिया था। और कोई भी प्रचारक ये जानता है कि वास्तव में मालूम हो कि ये आपको परमेश्वर ने दिया है, आप लोगों को बताने के लिए ललित रहते हैं। और मैं प्रचार कर रहा था, चार्ली जितने यत्न से मैं प्रचार कर सकता था, सब बातें सामने रख रहा था, आप जानते हैं, और कह रहा था, ये सारी महान बातें, ये जो परमेश्वर कर रहा है, इसे देखो। वो हृदय के विचारों को जांचता है, ये क्या है वचन, और इस प्रकार चलता है। और ओ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्मरण कर सकूँ कि मैं क्या कह रहा था, मेरा मूल पाठ क्या था। मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, समझे, परंतु मैं प्रचार कर रहा था और मैं स्वयं को ये करते हुए देख रहा था। और तब जब मैं वहाँ खड़े हुए देख रहा था और स्वयं को प्रचार करते हुए देख रहा था, और मैं उन्हें प्रचार कर रहा था जिनके पास ये नहीं है, और थोड़ी देर बाद मैं उठ गया, आप समझते हैं, और मैंने सोचा, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने कहा, इन आश्चर्यजनक बातों की ओर देखो, ये वो। सीधे सीधे मैंने ध्यान दिया, लोग शारीरिक भूख से भूखे होने लगे थे, और उनके पास पर्याप्त आत्मिक था, इसलिए वे जाने लगे। और उनमें से कुछ जमाइयां लेते हुए जाने लगे। मैंने सोचा इन सबके साथ क्या मामला है, और मैंने देखा कि इधर कुछ नवयुवक जोड़े मेरी ओर से जा रहे हैं, और मैंने रोका। मैंने कहा, मित्रों एक मिनट, केवल एक मिनट, आप फिर वापस आएंगे जब सांझ ढलेगी, समझे। मैंने कहा आप वापस फिर आएंगे, परंतु पहले मुझे आपको ये चरम देने दें। ये सारी बातें कहाँ से आई, ये मैंने आपको दर्शा दिया है, ये कहाँ से आई हैं? मैंने कहा ये यहाँ पर हैं, परमेश्वर के वचन में हैं। ये यहोवा यूँ कहता है, उसकी प्रतिज्ञा है, क्योंकि मैंने कहा कि आप सब लोग मेरे गवाह हो कि ये मेरा प्राधिकार है वचन के साथ बने रहें। मैंने कहा आप सबके साथ क्या मामला है, क्या आप वचन समझ नहीं पा रहे हैं? आपको इसे समझना चाहिए। और किसी ने कहा, श्रीमान मैं कुछ बिस्कुट खाना चाहता हूँ, और ऐसा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने सोचा भाई परमेश्वर की महिमा होवे, यदि वे बिस्कुट चाहते हैं तो उन्हें जाकर लेने दो। तो मैं घूमा, मैंने सोचा ओ, परंतु क्या आप जानते हैं थोड़ी देर बाद सांझ ढलने वाली है, अभी अभी। और मैंने कहा तो फिर आज रात्रि जब सभा फिर एकत्र होगी, अब मैं उनके सम्मुख उस चरम अवस्था को रखूंगा, और उन्हें बताया कि जो चीजें उन्होंने मुझे करते देखी वे परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं, किसी रहस्यमय पुस्तक में नहीं या किसी संस्था में, ये वचन में पाया जाता है, समझे। इसका हर बिंदु वचन में है, क्योंकि ये करना मेरा प्राधिकार है। मैंने सोचा आप जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक आज रात्रि वापस आएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं पृष्ठभूमि बनाऊंगा, एक प्रकार की भूमिका। आप जानते हैं कि मैं कैसे करता हूँ इन कलीसिया कालों में, और वे बातें कहता हूँ जो मैंने पहले कही। मैं वचन पर इसकी भूमिका बांधूंगा, और तब ये शानदार चर्म। मैंने कहा ये किस समय होगा, परमेश्वर की महिमा हो। और मैंने स्वयं को बहुत छोटे होते हुए देखा, और ये सुना, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने स्वयं को इस प्रकार से ओझल होते देखा, और यहाँ मैं वहाँ खड़ा था। अब यहाँ इसका अनुवाद इस प्रकार है, समझे। पहली चीज जो मैंने की, वो चीजें जो की गई लोगों के लिए रहस्यमय थी, उनमें से अधिकतर, मेरा फुल गॉस्पल से नहीं है और परमेश्वर के संतों से, परंतु मेरा अर्थ अधिकतर लोगों से है। और आप कभी भी संसार की ओर नहीं देखना चाहते, संसार की ओर, जैसा कि परमेश्वर का संदेश है। जब आप उसमें जाते हैं, आप कहते हैं जैसे बोआज़ ने कहा, मैंने सदा कहा वर्षों पहले मेरा एक स्वप्न था कि परमेश्वर मुझे शिकागो भेजेगा और शिकागो को परमेश्वर की महिमा के लिए हिला देगा। और मैंने कहा जोसेफ वो इसे पहले ही कर चुका, क्यों? उसने कहा वे तो मूडी के समय से हिलाई नहीं गए। मैंने कहा कि मैं कलीसिया के विषय में बात कर रहा हूँ, वहाँ टूटी तोप पड़ी है, ये केवल पृथ्वी की धूल है, ये झुंड सड़कों पर खचाखच भरे हैं और रंगी हुई इजाबेल और हर चीज। मैंने कहा ये वहाँ बाहर है, ये बड़े पुराने धर्मशालाएं और चीजें सूखे सूखे टुकड़े हो जाएंगी और वहाँ सड़कों पर गिर जाएंगी। मैंने कहा वो कलीसिया के विषय में बात कर रहा है, कलीसिया ने यीशु मसीह का प्रकाशन प्रकट होते हुए देखा और वे उसे पहचानते हैं। वे शिकागो में 15 नहीं होंगे, वे इस पीढ़ी में 10 भी नहीं होंगे, इस सारे शिकागो नगर में से सामने आए। तो क्या आपने कभी इस विषय पर सोचा? जैसा नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जहां 8 प्राणी बचाए गए। सादोम से कितने बाहर आए? देखिए मेरा क्या अर्थ है, मुझे संदेह है थोड़े से होने का भी, समझे। परंतु कलीसिया ने स्वयं ही झटके को स्वीकारा है, उन्होंने इसे पहचाना है, वे वचन को जान गए, उन्होंने वचन को ठोस रूप में होते हुए देखा है और उन्होंने इसे थाम लिया। अब एक मिनट के लिए इसकी ओर देखें, और अब ये पहला संदेश, जब वे इसे देखेंगे हर कोई इसके लिए एकत्र होगा। कहा ओ परमेश्वर की महिमा हो, ओ यदि मैं देख सकूं, ये वो और वो, वे इससे दूर हट जाएंगे उसी प्रकार से जैसे वे आए थे, समझे। और अब वे सोचते हैं, भाई मैं नहीं जानता कि आपको कहाँ सम्मिलित होंगे, यदि मैं इसके साथ नहीं आता तो ये इस तरह से होता और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और मुझे यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होगा। और भाई बैठ गए और कहा ठीक है, मैं क्या करूँगा यदि मैं वहाँ। देखिए वे इसे पहचानने के लिए अधिक नहीं रुकेंगे, ये वो वचन है जिसे परमेश्वर ने प्रकट होने देने की प्रतिज्ञा की है, समझे। और वे चले गए, परंतु चिंता ना करें, छायाएं बहुत ही समीप हैं, समझे। जब मैं कार्य क्षेत्र से वापस गया, आपको उस रात्रि का संदेश स्मरण है जो उसने मुझे पीछे दिया था, जब मैंने कोने का पत्थर रख रहा था, कहा कार्य करो, कहा जब तुम इस दर्शन से बाहर आ जाओ तो दूसरा तीमोथियस 4 पढ़ना। क्या आप जानते हैं कि वहाँ कोने के पत्थर में रखा है 33 वर्ष पहले। कहा सुसमाचार फैलाने का कार्य करो, अपनी सेवकाई को सिद्ध बनाओ, क्योंकि समय आएगा कि वो खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, परंतु अपनी लालसाओं के अनुसार शिक्षकों को एकत्र कर लेंगे। अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए कथा कहानियों से अलग रहो, सत्य से कथा कहानियों की ओर। यदि ये शब्द दर शब्द ऐसा नहीं हुआ परंतु तब स्मरण रखें, उस रात्रि जब मैंने इस बाकी बचे हुए को नहीं पढ़ा, 30 या कुछ वर्षों पहले मैंने ये आराधनालय में प्रचार किया, मैंने कभी भी एक बार भी इससे आगे नहीं गया और मैं नहीं जानता क्यों। मुझे उस दिन तक प्राय आश्चर्य होता था, मैंने देखा जहां यीशु ने लिपटी हुई पुस्तक उठाई और आदि भविष्यवाणी पढ़ने आरंभ की और रुक गया और कहा कफरनाऊ में, उसने कहा और आज ये भविष्यवाणी पूरी हुई। उसने बाकी बचे हुए को क्यों नहीं पढ़ा, ये उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, समझे। और वहां मैं इसे पढ़ूंगा ना जानते हुए मैंने इसे उठाया और ये ठीक मेरे सामने था, सदर्न पॉइंट साउथ कैरोलिना में था। उस प्रातः वहां खड़े हुए जोसेफ बोस से बातें कर रहा था, कार की ओर झुक गया, मैं प्रभावित हुआ। पौलुस ने कहा, मैं सब लोग मेरे विरोधी हो गए, मेरे साथ कोई नहीं था, डेमास मुझे इस आधुनिक संसार के प्रेम में मुझे छोड़कर चला गया, और अब मैं देखिए और ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। देखिए डेमास ने क्या सोचा होगा, क्यों मैंने पौलुस को सुसमाचार प्रचार करते और बीमारों को चंगा करते देखा है और यहाँ ये स्वयं दुखी बैठा है, अपने साथ एक डॉक्टर को लिए फिर रहा है लूका, वो सारे समय इस डॉक्टर को साथ लिए घूमता है, एक मनुष्य दिव्य प्रचार कर रहा है, क्यों मैंने उसे एक मनुष्य को अंधा करते हुए देखा है, कहा प्रभु तुझे डांटे और तू कुछ समय के लिए अंधा रहेगा, और ठठेरे ने उसे सभा में से भगा दिया। मैं समझता हूँ कि वो उस मनुष्य को अंधा करने वाली सामर्थ को खो चुका है, अंततः वो अपनी दिव्य चंगाई वाली शक्ति को खो बैठा, परमेश्वर उसके विरोध में हो गया। मैं नहीं सोचता कि डेमास संसार में चला गया, क्योंकि डेमास एक था, आप उसका इतिहास जानते हैं, वो बहुत ही धनी परिवार से था और बाकी भीड़ के साथ जाना चाहता था, परंतु पौलुस निर्धन बेचारा पौलुस ये क्या था, परमेश्वर सेवकाई को सदा इसी प्रकार होने देता है और तब उसे ताज पहनाता है। उसने यीशु को ऐसे स्थान पर आने दिया, वहाँ देखिए, जब वो मृतकों को जिला सकता था, जब वो जो चाहे कर सकता था और रोमी सिपाही को अपने चेहरे पर से दाढ़ी खींचने देता था और थूकने देता है, उसे मारते हैं, उसके मुख पर कपड़ा डालकर और कहा, अब तुम जानते हो, वे मुझे बताते हैं कि तू एक भविष्य रखता है, और वे सब चारों ओर सरकंडे लिए खड़े हैं और उसके सर पर मारते हैं और कहा, अब बता तुझे किसने मारा। वो जानता है उसे किसने मारा, निश्चय ही वो जानता है, समझे। परंतु उसकी सेवकाई मुकुट धारण करने के लिए तय थी। ये सदा उस बिंदु पर आती है जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तव में निर्बल है, बस समाप्त होने वाली है, तब परमेश्वर इसे मुकुट पहनाता है। ओ प्रभु इसे होने दें, प्रभु इसे घटित होने दें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।
And purchase my salvation on Calvary Street.
आइए हम अपने हाथ उसकी ओर उठाएं।
Now be in the spirit. See, I love him. Now, remember. Remember this now. I'm going to ask the little brother here that I had in the room a few minutes ago, a precious little brother, a missionary to the assemblies in the wilderness up here. I forget what his name is. I'm going to ask him to dismiss in prayer as soon as we sing this next verse. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations round you gather, just breathe that holy name in prayer. Watch devils leave then, see? Now remember, take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just stop and breathe that holy name in prayer. Watch what takes place. All right, all together now.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. Oh, and temptations around you gather.
What do you do now?
Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, Father, and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet.
How sweet. Standing here the last time I was at the tabernacle here, this mother keeps laughing and pointing to the baby. This baby was embracing. They're just running all around here playing sweet today. Isn't that nice?
Yeah.
Praise the Lord. Now watch him. Jump down and show them how you can run around, see? Oh, precious name. Remember communion tonight now.
Oh, how sweet. Oh, Father, joy. Precious name, oh, how sweet, oh, Father, and joy of heaven.
Now let us bow our heads and remember the services tonight now, and it's communion night, and you all remember that you're Christians. We invite you to come and take communion with us. We're expecting a great time. Our precious pastor here, Brother Neville, and how many love Brother Neville? Say amen.
Amen.
Listen, brethren, listen to me as one of the pastors here at the tabernacle. Stick with Brother Neville. Stay with him. See, he's a servant of Christ. Stay with him. The Bible says, let us assemble ourselves together, and that much more as you see this evil day approaching. The time this service has come, let's move right in and stay right by our pastor's side.